जैसा कि भाई नेविल उन घोषणाओं को कर रहे थे जिसे भाई मूर एक दिन बता रहे थे, वे प्रभु की आत्मा के बारे में बात कर रहे थे जो इमारत के अंदर आ रहा था। उसने कहा यह बहुत ही अधिक रहा, इतना तक मुझे लगा कि रैप्चर आ गया था जब तक मैंने लोगों को यहाँ वहाँ बैठा हुआ नहीं देख लिया। कहा यह अभी तक नहीं आया है, क्योंकि यदि वे अब भी यहाँ हैं तो मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसलिए कभी कभी प्रभु का आत्मा इसे हमारे लिए अच्छा करती है। हम बहुत से मित्रों को यहाँ इमारत में देखकर बहुत ही खुश हैं। बहुत से लोग को बारे में बताने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी भी देखा दरवाजे पर आते हुए भाई कारपेंटर को, वो व्यक्ति वहाँ उसकी पत्नी के साथ है, उसने और मैंने एक साथ विवाह किया। भाई कारपेंटर वो यहाँ कलीसिया में हमारे लिए एक बड़ी आशीष रहे हैं और सेवकाई के जरिए से वे हमारे लिए एक आशीष रहे हैं, और लगभग वे जो भी हैं कहीं भी प्रचार करते हैं और हम उन्हें यहाँ हमारे साथ पाकर खुश हैं। ओह, बहुत से दूसरे लोगों को देखकर खुश हैं। अब यहाँ एक और सवाल है जो मुझे कल शाम को दिया गया था। भाई ब्रैनम, क्या मत्ती 25 के 5 मूर्ख कुंवारियों को बचे हुए अन्य जातियों के रूप में गिना जाता है? मैं समझता हूँ कि 5 मूर्ख कुंवारियों को बचा लिया गया था, लेकिन उन्हें उस बड़े महासंकट के दौर से गुजरना पड़ेगा। क्या ये सही बात है? यदि हाँ, तो उनकी अंतिम मंजिल क्या होगी? क्या वे भेड़े हो सकती हैं जो मत्ती 25, 33 और 34 में बकरियों से विभाजित हुई हैं? बहुत ही अच्छा धर्म ज्ञानी है। उसके अनुसार जो मैं ये भी सोचें कि वे जो बचे हुए हैं, सोई हुई कुंवारी जिसके लिए प्रकाशित वाक्य में बताया गया स्त्री के बीच जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं और यीशु मसीह की गवाही को देते हैं। एक महिला कपड़े को लेती है और उस कपड़े को जमीन पर बिछा देगी, तो अब वह उसे काटती है या उसके आकार को देती है और वो कहीं से भी काटती है उसकी इच्छा के अनुसार, जिस तरह से वह उसे काटना चाहती है, और फिर उसने जो कुछ बचाकर छोड़ा है उसे अवशेष कहा जाता है। लेकिन वह अपनी स्वतंत्र सोच से इसे एक निश्चित स्थान से काटने के लिए चुनती है, लेकिन जो बचा है उसे अवशेष कहा जाता है। अब यदि आप ध्यान दें तो 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ थी। वे सभी कुंवारियाँ थी जो एक ही वस्तु से बनी हुई थी, लेकिन चुनाव के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया की नींव डालने से पहले चुनाव के द्वारा उसने अपनी दुल्हन को चुना, मेमने की जीवन की किताब पर उनके नाम को डाला जो दुनिया की नींव डालने से पहले घात हुआ। इससे पहले कि संसार का कभी आरंभ होता, परमेश्वर उसके मन में अनंत होने के नाते, और हम कभी कभी पहले से ठहराए जाना इस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यह इस कलीसिया युग में एक निश्चित पकड़ है जिसमें हम रहते हैं। यह निश्चित रूप से शहीदों के दिनों में इस्तेमाल की जाने वाली एक महान बात थी, क्योंकि वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास करते थे। लेकिन अब ये बात इनसे दूर हो गई है। वे कलीसिया में नियम कायदे के विचार, नियम कायदे की शिक्षा को देते हैं, जो एक अच्छी बात थी, क्योंकि ये सब के सब इंग्लैंड में कैल्विनिस्टिक में चले गए थे, इतना तक कि उनके पास कोई और बिदारी नहीं हुई, और जॉन वेस्ली अर्मिनियन सिद्धांत के प्रचार करने के साथ आता है जिसने इसे संतुलित कर दिया। परमेश्वर हमेशा इसे संतुलित करेगा। तो फिर मूर्ख कुंवारी वो थी जिसके दियो में तेल नहीं था, जो मैं सोचता हूँ कि उसे भारी अंधकार में डाल दिया गया था, जहाँ पर रोना पीटना और दांतों का पीसना था। और यदि आप इसकी तुलना करेंगे या आपके पद चिन्ह, तो यह इसे फिर से सीधे बड़े महासंकट पर वापस ले जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि वे वही हैं जो पीछे रह जाते हैं और बड़े महासंकट से होकर गुजरते हैं, और वहाँ इस पर पूर्ण रूप से एक सबक है। यदि हमारे पास इसमें जाने का समय होता था तो बताते। यदि आप अब याद रखें, मैंने पहली बार कहा है, जब आप टेप को सुनेंगे ये बातें बस उसी तरह से हैं जैसे मैं विश्वास करता हूँ वे सही होंगी, समझे। अब यदि वे गलत होती हैं तो मैं नहीं जानता कि वे मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैं विश्वास करता हूँ, और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। जब हम आते हैं तो हमें उन चीजों को एक तरफ रखना चाहिए और फिर उन बातों को लें और इसे ढूंढें जो बातें कही गई हैं, और देखें कि क्या ये वास्तव में वचन के अनुसार है या नहीं। यह इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर क्योंकि ऐसे दिन में जैसे अब हम रह रहे हैं, ऐसे राष्ट्र में जहाँ पर सब बार बार और बार बार बटोरा गया है, सारी उन तरह तरह की बातों से फिर लोगों के लिए इससे पकड़ना कठिन हो जाता है, जैसे ये नए क्षेत्रों में होता है। आप उन्हें बताते हैं, वे इसे विश्वास करते हैं, इसी तरह से ये चलता रहता है। लेकिन अब कोई इस विचार के साथ आएगा और कोई एक इस दूसरे विचार के साथ आएगा, और हमारे पास लगभग 900 और कुछ अलग अलग संप्रदाय की कलीसियाएं हैं, और प्रत्येक के पास एक दूसरे के विपरीत इनकी शिक्षाएं हैं, और वहाँ कोई तो गलत होगा और कोई तो सही होगा। सो अब इसका एकमात्र प्रमाण है, इसे वापस बाइबल में लाना है। देखो, बाइबल की ओर लाएं। अब कई बार लोग अपना खुद का अनुवाद डालते हैं, लेकिन हम पूरा यत्न करते हैं जितना हम कर सकते हैं, अपना कुछ भी मानवीय अनुवाद इस पर न डालें। बस जैसे यह है इसे वैसे ही पढ़ें और कहें इसका यही तरीका है। और फिर मैंने हमेशा ध्यान दिया है, यदि आप उसी तरह से लेते हैं जो उसने कहा है, तो हर एक बात बिल्कुल सही वचन से जुड़ती जाएगी। ये लगभग एक यहाँ वहाँ बिखरी एक पहली तस्वीर को एक साथ रखने की तरह होता है। आपको मूल तस्वीर को देखना होगा, इससे पहले आप यहाँ वहाँ बिखरी पहली को एक साथ सही तरीके से रख सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास जो तस्वीर होगी, आपके पास एक गाय होगी जो एक पेड़ के ऊपर घास खा रही है, तो यह तब सही नहीं दिखाई देगा। और यदि हम केवल पवित्र आत्मा को करने देते हैं, बाइबल किसने लिखी है? पवित्र आत्मा मनुष्य पर आया और बाइबल को लिखा, तब बिना पवित्र आत्मा के आप चाहे कितने भी पूरी तरह से शिक्षित क्यों न हो, आप इसे कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु ने भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया था कि उसने इसे ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छुपाकर और इसे ऐसे बालकों पर प्रकट किया है जो सीखना चाहते हैं। और उनमें हर एक चेला कम या ज्यादा पढ़ा लिखा और अनपढ़ था, सिवाय एक के, और वो पौलुस था। और पौलुस ने कहा कि मसीह को पाने के लिए उसे सब भूल जाना है, जिस बातों को वो हमेशा से जानता आया था। तो उसने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा कि वो मनुष्य के ज्ञान और बड़ी बड़ी बातों के साथ नहीं आया था, इसलिए कि तब उनका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर होगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रमाण के साथ उनके पास आया कि उनका विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के कार्यों पर विश्राम करे। और यहीं पर हम ठीक अभी बहुत ही नजदीक बने रहने का यत्न कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह के खत्म होने से पहले या सप्ताह का समय पूरा होने से पहले आप इसे देखेंगे, यह बिल्कुल वही है। वो छोटा सा धागा उस युग के साथ साथ वहाँ से होते हुए आगे आ रहा है। बोर्ड को थोड़ा ऊपर रखने के लिए धन्यवाद, ये अच्छा लग रहा है। अब ओह, मैं सोचता हूँ हमारे पास यह सब सर्दियों में होता था, तो हम पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ले सकते थे और तब ठीक इसके जरिए से जा सकते थे। उनमें कुछ ऐसी सुंदर शिक्षाएं हैं। और मुझे याद है, मैं सोचता हूँ कि यह 20 वर्ष या 25 वर्ष पहले ऐसे रहा था, जब कलीसिया तब उस वक्त नई नई थी। हमने एक शुरुआत की, प्रारंभिक की, वो एक गिर गई, और वहाँ से लगभग वो अगली गिरते गई। हम प्रकाशित वाक्य की किताब में से होते हुए आ रहे हैं। अब मुझे याद है कि अय्यूब की किताब में से बता रहा था, ओ भाई राइट, मैं उस पर बहुत देर तक बोलता रहा, अतः जब तक एक महिला ने लिखकर और मुझसे पूछने लिया, उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप कभी भी उस राख के ढेर से अय्यूब को नहीं उठाएंगे? तो मैं एक कुछ बात पर आने का यत्न कर रहा था, क्योंकि ठीक वहीं पर जहां हर एक चीज उस स्थान पर दबी हुई थी, उस स्थान पर जहाँ परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई, उसके बाद जब बिजली चमकने लगती है और गरजने लगती है, तो आत्मा नबी पर आता है और उसने प्रभु के आगमन को देखा। और मैं इसी बात को हृदय में डालना चाहता था, यही कारण है कि मैंने उसे लंबे समय तक राख के ढेर पर रखा, जिससे हम बातों को जोड़ सके। और मैं जानता हूँ कि यह थोड़ा कुछ थका सकता है, मुझे भी बेचैनी हो जाती है जब मैं किसी को किसी बात के आसपास नाट्य रूप देते हुए सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वह आगे जाकर उस मुख्य बात को बता देगा, लेकिन हो सकता है परमेश्वर उस व्यक्ति को उस उद्देश्य के लिए नेतृत्व कर रहा हो। अब इस बचे हुए अवशेष पर, इससे पहले कि हम सवाल से आगे बढ़ें, मुझे आशा है मैं इसे साफ कर लूंगा। यह मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि वे बचे हुए अवशेष परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। मैं इसे विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने दुनिया की नींव डालने से पहले अवशेष को चुना और उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा हुआ है, ना ही वचन। अब पहले से ठहराने को देखें, देखो, क्योंकि यह लोगों के बीच एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, देखा, लेकिन परमेश्वर दुनिया की नींव डालने से पहले अपने महान अनंत विचार में उसने कलीसिया को चुना, यीशु को चुना, कलीसिया को चुना, और आरंभ में भविष्यवाणी कर सका कि यह अंत में क्या होगा। वो यदि वो अनंत है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता था। वो हर एक पिस्सू को जानता था। वो कभी धरती पर होगा और कितनी बार यह अपनी आंखों को झपकाएगा, अब ऐसे ही कितनी, और ये कितना चर्बी को उत्पादन करेगा और उसमें से वे सब कितना उत्पादन करेंगे, यही वो अनंत है, यही अनंतता है। आपके पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है, और परमेश्वर वही तो वो है जो एक अनंत परमेश्वर है। इसलिए यदि आप ध्यान दें तो बाइबल ने कहा कि अंतिम दिनों में धरती पर आने वाले मसीह विरोधी, अब ध्यान से सुनना, यही एकमात्र दोष है। मैं सोचता हूँ कि वह मेरे लाखों दोष निकाल सकता है, लेकिन हमारे बहुमूल्य भाई बिली ग्राहम, एक दिन उन्होंने उस ध्यान दिलाने वाले उपदेश को पिछले रविवार को प्रचार किया, और निश्चय ही यह एक सही समय का संदेश था, और लेकिन उसने कहा कि शैतान चुने हुओं को भी भरमा रहा है। नहीं, बाइबल में कहा गया है वह चुने हुओं को भी भरमा देगा, यदि यह संभव होता था तो, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दुनिया की नींव डालने से पहले चुना था। समझे, वो मेमना यीशु मसीह, वो मेमना था जो दुनिया की नींव डालने से पहले घात हुआ था। जब परमेश्वर भी अपने मन में डालता है, जब वह उस शब्द को बोलता है, यह कभी भी नहीं बदल सकता है, यह कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। देखो, क्योंकि वह अनंत है और उसके वचन पूरे होंगे। जरा सोचें, वही जिस धरती पर हम आज रात बसे हुए हैं, ये परमेश्वर के वचन का जाहिर होना है। दुनिया को एक साथ उन चीजों से गठन किया गया था जो यहाँ तक दिखाई भी नहीं देती थी। उसने बस इतना कहा, ऐसा होने दो, और ऐसा था। फिर परमेश्वर के लिए एक बीमार शरीर को चंगा करना कितना आसान है, यदि वह केवल इसे बोलकर एक सृष्टि को बना सकता है। देखो, उसका वचन, यदि हम केवल यह देखने के लिए विश्वास को प्राप्त कर सके कि उसका वचन क्या है। हम धरती की चीजों से इतने बन चुके हैं और अपने मन में इन सारी चीजों से इतने घुल मिल गए हैं कि हम, ओह मैं नहीं जानता, हम अपने मन में इतने सांसारिक हैं और इतनी भिन्न भिन्न बातों को लिए हुए हैं, और हम, ओह मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ इतने सारे परलेखन हैं, एक दाव इससे और एक दाव उससे, और इस बात ने हमें एक स्थान पर लाया है जहाँ वह पूरी तरह घुमाई गई है। लेकिन यदि आप कभी हिलाकर सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, वापस आकर इस बात को जाने कि वो परमेश्वर है, और अब उसके वचन और विफल नहीं हो सकते, नहीं तो वो विफल हो जाएगा, और यदि उसका वचन विफल हो जाता है तो परमेश्वर विफल हो जाता है, और यदि परमेश्वर वहाँ विफल होता है तो वह परमेश्वर नहीं है। समझे, सो और आपको याद होगा, वो यहाँ पर एक बात को नहीं कह सकता है और यहाँ पर कुछ और बात को कहे, उसे परमेश्वर होने के लिए अपने उस पहले निर्णय के साथ ही बने रहना है। तो हम सिर्फ, और उसने हमसे केवल एक बात मांगी है कि उस पर विश्वास करें जो उसने कहा है, वो सत्य है और वह उसे पूरा करेगा। ओह कितनी सुंदर बात है, आप अपेक्षा करते हैं वो चीज अपने आप घटित हो जाए। कभी कभी बस ये थोड़े से विश्वास को लेता है, ये चमत्कार को नहीं करेगा, लेकिन यदि आप इसे पकड़े रहेंगे तो ये आपको बाहर लेकर आएगा। बस ठीक इसके साथ बने रहें। जैसा उसने कहा, राई का दाना जो सभी बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, राई किसी के साथ मिश्रित नहीं होता है। आप राई को किसी के साथ संकरित नहीं कर सकते हैं, यह संकरित नहीं होगा। और यदि आपके पास विश्वास है, बस एक जरा सा विश्वास है, जो बातें किसी भी अविश्वास या किसी भी कलीसिया से संबंध या संस्था से नहीं संकरित होगा, बस ठीक परमेश्वर के साथ बना रहेगा, बस ठीक इसके साथ बना रहेगा, यह ठीक आपको उस धुंध में से होते हुए बाहर लाएगा, आपको सीधे बाहर लेकर आएगा। जी हाँ, केवल उस विश्वास के साथ बने रहें। अब आरंभ में जब परमेश्वर, बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि अंतिम दिनों में मसीह विरोधी, अब इन कलीसियाओं को देखें, सब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। मसीह विरोधी अंतिम दिनों में उन सभी को भरमाएंगे जो पृथ्वी पर हैं, जिसका नाम दुनिया की नींव डालने से पहले मेमने की किताब में नहीं लिखा गया था। आपका नाम जीवन की किताब में कब डाला गया था, इससे पहले कि हमारे पास कभी धरती होती थी। आपको इस युग में पवित्र आत्मा को पाने के लिए चुना गया था। मैं एडी पेरोनिनेट के साथ जुड़ गया हूँ। मैंने अपने प्राण को आश्रय स्थल के विश्राम में लंगर किया है, ताकि तूफानी संदेह के समुद्र पर अब और अधिक जल यात्रा न हो। वो आंधी हो सकता है, प्रचंडता से बहकर उमड़ने लगे, गंभीर तूफान हो, लेकिन यीशु में हम हमेशा से अधिक सुरक्षित हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अलग कर सकता है। परमेश्वर नहीं कर सकता है, उसके वचन पर से पीछे नहीं हटता है। और यदि वह अनंत है और आपको यहाँ पर पवित्र आत्मा देता है, यह जानते हुए कि वह आपको यहाँ खोने जा रहा है, तो वो किस तरह के काम को करता है। यदि आप अपने अनुभव में भरमाए नहीं गए हैं, यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन देखें कि बाइबल ने क्या कहा। इफिसियों 4:30 में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे आप तब तक के लिए मोर बंद किए गए। क्या अगले बेदारी तक? क्या ये सही लगता है? आप अपने छुटकारे के दिन तक मोर बंद किए गए हैं। कब तक? आपके छुटकारे तक। आप एक मालगाड़ी को लेते हैं, आप सामान को पटरी के डब्बे पर चढ़ाते हैं, और जब यह पूरी तरह से भर जाता है, अब वे उस गाड़ी को तब तक बंद नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ निरीक्षण करने वाला नहीं आता है। और वह निरीक्षण करता है और देखता है कि क्या कुछ भी ढीला है जो उसे हिला कर देखेगा। वो गाड़ी हो सकता है, मालगाड़ी पूरी तरह से भरी हुई हो सकती है, लेकिन यदि इसमें कोई ढीला ढाला स्थान है तो आपको इसे फिर से भरना होगा। और यही वो मामला है, हम में से बहुतों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। जब निरीक्षण करने वाला वहाँ आता है तो वह बहुत से ढीले स्थानों को पाता है, आप देखें, इसलिए वो इसे तब मोरबंद नहीं करेगा। एक दिन बड़ा धर्मशास्त्री मेरे पास आया, न कि एक दिन की बात है, यह 3 या 4 साल पहले की बात है, और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था और यह उसके निमित्त धार्मिकता गिना गया था। मैंने कहा, यह ठीक बात है, सही है। कहा, मनुष्य और क्या कर सकता है सिवाय विश्वास करने के? मैंने कहा, यही वो सब कर सकता है। उसने कहा, फिर आप इस पवित्र आत्मा की चीज के साथ कहाँ जाते हैं? अब आप जानते हैं कि वह एक बैप्टिस्ट था, और उसने कहा, आप इस पवित्र आत्मा के साथ कहाँ जाएंगे? कहा, यदि मनुष्य विश्वास करता है, जिस मिनट पर आप विश्वास करते हैं आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, अब आप वचनों में प्रतिवाद बनाते हैं, वचन अपने आप का प्रतिवाद नहीं करता है, समझे? पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से तुमने विश्वास किया है? और उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, यह सच है कि अब्राहम विश्वास का पिता, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी और परमेश्वर पर विश्वास किया था, और यह उसके निमित्त धार्मिकता गिना गया था, लेकिन उसने उसे एक चिन्ह के रूप में खतना की मोहर दी कि उसने उसके विश्वास को पाया था। अब यदि उसने आपको अभी तक पवित्र आत्मा से मोहरबंद नहीं किया है, तो उसने कभी भी आपके विश्वास को अभी तक उसमें नहीं पाया है। आपके पास कुछ ढीले स्थान है, देखा, आप हो सकता है विश्वास करें, जी हाँ, लेकिन वहाँ बहुत सारे ढीले स्थान हैं। लेकिन जब आप सभी ढीले स्थानों को सही तरह से ठीक से भर देते हैं, तब वह आपको आपके छुटकारे के दिन तक पवित्र आत्मा से मोहरबंद करता है। यही परमेश्वर की पुष्टि है कि उसने विश्वास को पाया है जो आपने उसमें घोषित किया है। अब्राहम ने विश्वास को घोषित किया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अब एक चिन्ह दूंगा कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, और उसने उसे खतना का चिन्ह दिया। अब जब आप व्यक्तिगत रूप से मसीह को उद्धारकर्ता की नाई ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उससे मांगते हैं कि आपके जीवन को साफ करे, और फिर जब वो पवित्र आत्मा के साथ वापस आता है और आपको पवित्र आत्मा के चिन्ह को देता है, तब आप आपके छुटकारे के दिन तक मोर बंद किए जाते हैं। यहाँ ये मालगाड़ी है, यदि ये ढीला ढाला है, इसके पूरी तरह से एक साथ भरने के बाद और वे उस दरवाजे को बंद करते हैं और उस पर एक मोर को लगाते हैं, और यह अपने गणतंत्र या पहुंचने के स्थान तक मोर बंद हो जाती है। रेलगाड़ी की कंपनियां जीवन भर के लिए आपको जेल में डाल देगी यदि आप उस मोहर को तोड़ते हैं। उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, यह अपने गंतव्य स्थान तक के लिए मोहर बंद होती है। ना ही कोई भी इसके साथ की पटरी पर इसे खोलकर और खींच सकता है और इसे देख सकता है और इसकी जांच करता है और इसे बार बार देख सकता है और कुछ चीजों को बाहर निकालकर फेंके या कुछ चीजों को डाले, नहीं नहीं। यह कलीसिया कहेगी तो वह संप्रदाय कहेगी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है तो इससे बात खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि आप कहां पर खड़े हैं, आप जानते हैं कि क्या हुआ है, और आप वहां से लेकर छुटकारे के दिन तक मोहर बंद कर दिए गए हैं, जो आपकी धरती की यात्रा की अंतिम मंजिल है। ओ प्रभु, यह किसी के लिए भी तब विश्वास का होना और परमेश्वर पर भरोसा करने की इच्छा होनी चाहिए। बस पवित्र आत्मा की सामर्थ में ऊपर आना है। अब इन कुवारियों को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आपको याद है, उनके पास केवल एक चीज की कमी थी कि उनके दिए में तेल नहीं था। क्या ये सही बात है? बाइबल ने कहा, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यही कारण है कि हम तेल से बीमारों का अभिषेक करते हैं और इत्यादि, क्योंकि यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अब और तब यदि पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया तो उनके पास ये नहीं था, और फिर जब वो आया तो उन्होंने कहा, अब कुवारियों के पास जो तेल था, कहा आप देखना वे पहले जो कलीसिया युग में थे वहाँ उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे लोग थे, लेकिन वे उस तारे के उजाले में नहीं थे। मेरे कहने का जो अर्थ है, वो बत्ती तेल के अंदर डूबी होती है, देखो, और ये बाहर थी, वह बाहर निकल गई थी, उन्होंने खुद को अलग कर दिया था। पौलुस ने अपने दिन में कहा, उन्होंने खुद को हमसे अलग कर लिया, ऐसा दिखाई देता है कि उनके पास विश्वास नहीं है, देखो, और उनसे दूर चले गए, वे हमसे बाहर चले गए, क्योंकि वे हम में के थे ही नहीं। अब यह उस आरंभ के इफिसियो युग में शुरू हुआ और वहाँ से लेकर आज इस युग में से होते हुए आ रहा है, वही चीज उन हरेक युगों में जो उनके साथ घटित हुआ, जो यहाँ इन युगों पर आगे बढ़ता है। हम थोड़ी देर में उस पर गहराई में उतरने जा रहे हैं। अब ध्यान दें कि यह कुवारी, हालांकि वह वहाँ चली गई जहाँ रोना, कहरना और दांतों का पीसना था। मुझे यह कहना है मेरे बहुमूल्य मित्रों, क्योंकि आमतौर पर यहाँ कलीसिया में जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बस यहाँ आकर और एक चंगाई की सभा को करता हूँ और बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और बाहर के देशों में कहीं भी जाता हूँ, लेकिन ये वो समय है, मैं आपको काफी समय से बताते आ रहा हूँ, अपने विवेक को अपनी जेब में रखें। अब हम आकर और एक दूसरे के साथ ईमानदार और सच्चे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अंतिम दिन में हैं। जी हाँ, अब यही है जहाँ आप बहुमूल्य नाजरीन और पिलग्रिम होलीनेस जो उस पवित्रीकरण के नीचे हैं चूक गए हैं। देखा, अब क्या आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ठीक उस स्थान तक रहा था। यहूदा ने प्रभु यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसे भी पवित्र किया गया था, वह पवित्र हुआ था। यूहन्ना 17:17 में जब यीशु ने कहा, पिता उन्हें सत्य के जरिए से पवित्र करे, तेरा वचन सत्य है, और वो वचन था, तो ठीक है। मत्ती 10 में उन्हें बीमारों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने, शैतानों को बाहर निकालने की सामर्थ्य दी गई थी, और वे राज्यों के सभी भागों में चले गए और शैतानों को निकाला और आनंद मनाते हुए, चिल्लाते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस आने लगे। और यीशु ने उनसे कहा, आनंद मत मनाओ क्योंकि वे शैतान तुम्हारे अधीन हैं, लेकिन आनंद करो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की किताब पर है। क्या यह सही है? और यहूदा उनके साथ था, यहूदा उनके साथ था, लेकिन यह एक वर्ष और 6 महीने पहले की बात है, इससे पहले यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब फिर जब यह पेंटिकॉस की बात आई, यहूदा को पवित्र आत्मा को पाने के लिए और आदि, तो उसने अपना रंग दिखाया, उसने यीशु को इंकार कर दिया और उसके लिए एक विश्वासघाती बन गया, और बस बिल्कुल वहीं पर जहां वो आत्मा आता है, ठीक वहां पर लूथर में से होते हुए वेस्ली में से उस कलीसिया को पवित्रीकरण तक लाया जो कुवारी का जीवन है, शुद्ध, साफ, पवित्र, भले, बहुत ही अच्छे लोग जिनसे आप अभी तक मिले होंगे, लेकिन जब यह वहां आता है, जब वे अन्य जुबान में बोलते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, नाजरीन पिलग्रिम होलीनेस फ्री मेथोडिस्ट, तब वे कहते हैं यह तो शैतान है। और ठीक इसके बाद जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए अलग कर देते हैं, जो कोई भी मनुष्य के पुत्र के विरोध में एक शब्द भी बोलता है उसे क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है उसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। याद रखें, सारे चेलों ने अन्य जबान में बात की थी, यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो अन्य जबान में बोल रहा था, इसलिए यदि आप यहाँ पर उनके साथ व्यवहार को नहीं कर सकते हैं, उनके साथ यहाँ मित्रता पूर्वक नहीं हो सकते, तो वहाँ पर क्या करेंगे? उनके लिए यही ये शैतान है, वैसे ही वे शैतान थे। सो आप वहाँ पर देखते हैं जहाँ इसने अपना रंग दिखाया, वहाँ वो कुवारी आती है, उन बाकी के जैसे साफ, शुद्ध जीवन। मैं पुराने फैशन के नाजरीन पिलग्रिम होलीनेस के कलीसिया को लूंगा जो वास्तव में पवित्रीकरण में विश्वास करते थे। आप उनके जीवन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, वे उतने ही साफ हैं जितने वे हो सकते हैं। यह एक अच्छी बात है कि हम सभी इसी तरह से जिए, यह सही है, आपको ऐसा जीना है। अब हम जानते हैं कि वहाँ हमारे पास बहुत से पेंटिकॉस्टल के जैसे नकल करने वाले लोग हैं, यह सही बात है, लेकिन जब तक आप बस एक नकली डॉलर को देखते हैं, आप जानते हैं कि यह एक अच्छे, एक असली की नकल से बना हुआ था, यह सही है। और वहाँ एक वास्तविक पवित्र आत्मा है, एक वास्तविक जो अन्य जुबान में बोलता है और चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाता है, और यह ऐसा पेंटिकॉस्ट से लेकर रहा है, इसलिए हमारे पास ये होने के लिए नकल करने वाले होना है। हमारे पास एक दुष्ट महिला होना है जो अच्छी नहीं है कि एक सच्ची महिला की चमक को दिखाने के लिए। हमारे पास एक रात का समय होना है घोर अंधेरा, यह दिखाने के लिए कि धूप महिमा में है, यह सही है। और आपको बीमार होना है ताकि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले, और भले और बुरे का एक नियम है, और यह ऐसा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा जब तक समय है। अब तो वही है जहाँ कलीसिया अपने आप में ऊपर बढ़ते गई। अब क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि अंतिम दिनों में मत्ती 24 में कि दो आत्माएं इतनी नजदीक एक जैसी होंगी, इतना तक यह संभव हो तो बिल्कुल चुने हुए लोगों को भरमा देगी। लेकिन वो जो पृथ्वी की नींव डालने से पहले चुना गया था, उसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन, आप इससे छूटकर नहीं जा सकते। ये अनंत है जैसे परमेश्वर है, और अब आप अस्तित्व में नहीं रह सकते तब परमेश्वर अस्तित्व में रह सकता है। यह सही है क्योंकि आप परमेश्वर के भाग हो, आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो, आपका जीवन बदल गया है और आप परमेश्वर के भाग हो, आपके पास अनंत जीवन है। ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? अब किसी ने मुझे यहाँ कुछ लिख कर दिया है, बस एक छोटा सा सवाल है। हम इसका उत्तर देने में बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, और याद रखें, हर बार जब आप छोटा सा सवाल करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे लूँ यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। एक ने यह जानना चाहा है कि क्या महिलाओं के लिए गवाही देना गलत है, या गीत गाना, या अन्य जुबान में संदेश देना, संदेशों का अनुवाद करना, या कलीसिया में एक भविष्यवाणी करना। नहीं, यह गलत नहीं है। यह एक, जब तक यह उस स्थान में व्यवस्था में बात आती है, समझे, कलीसिया व्यवस्था में होती है, और केवल जब यह वास्तविक सच्चा करने का जो तरीका है उन लोगों के लिए जो अन्य जुबान में बोलते हैं और इत्यादि, उनके संदेश उस पुलपिट से आने वाले संदेश से पहले दिए जाते हैं, ना ही कभी प्रचार के समय के दौरान, क्योंकि पवित्र आत्मा एक समय में एक ही स्थान से आगे बढ़ता है, जैसा कि पौलुस ने वहाँ पर कहा था। लेकिन स्त्रियों को भविष्यवाणी का दान दिया जाता है, और अन्य जुबान और अनुवादों का दान दिया जाता है, और सब कुछ दिया जाता है सिवाय प्रचारक होने के। उन्हें प्रचारक नहीं होना है, उन्हें कलीसिया में प्रचार करने की मनाही है। यह सही बात है, उस स्थान को लेना या कलीसिया में शिक्षक या कुछ भी बनना। लेकिन जहाँ तक दानों की बात है, स्त्री के पास वह सब दान है जो एक ले सकती है, या उन 9 आत्मिक दानों में से किसी भी दान को ले सकती है, पहले कुरिन्थियों 12 के अनुसार। और ये किसी बंधन में नहीं है कि उसका संदेश अपने स्थान पे नहीं आना चाहिए। आप देखें, हर एक संदेश अपने समय की प्रतीक्षा करता है। यदि कोई ऐसा है जो अन्य जुबान से बोलता हो, वहाँ कोई अनुवादक न हो, तो उसे शांत बने रहना है जब तक कोई अनुवादक न हो, समझे। और ये संदेश आमतौर पर सभा से पहले दिए जाते हैं, तब भविष्यवक्ता या प्रचारक, जो एक नए नियम का भविष्यवक्ता है, एक प्रचारक जब वो सामने आता है, परमेश्वर उसके जरिए से बोलना आरंभ करता है। देखो, फिर जब वो समाप्त करता है, उसके बाद एक और संदेश या भविष्यवाणी बोलना आरंभ होती है, तब ठीक उसके पहले यह हमेशा ही व्यवस्था में होता है, हमेशा ही। लेकिन एक स्त्री के पास उचित अधिकार है। अगला सवाल, मैं बस चाहूँगा इसका उत्तर देने में थोड़ा समय लूँ। मैं शीर्षक पढ़ने जा रहा हूँ। 3 अलग अलग मत के विश्वास करने वालों ने एक बाइबल का अनुवाद करना आरंभ किया है। वाशिंगटन 15 अक्टूबर एक दल के रूप में काम करने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहूदी के विद्वानों ने वचनों को मिलाकर एक नया अनुवाद आरंभ किया है, जो एक लंबे समय से प्रतीक्षा की गई कैनन बाइबल साबित हो सकती है। कुछ और बातें यह मैं थोड़ा अध्ययन करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इसकी घोषणा करूँ। दूसरे शब्दों में, आप बिल्कुल वही देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जो वचन कहता है, जो बात इन दिनों में जगह लेगी कि ये चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी और पशु की छवि को तैयार करेंगी। बिल्कुल ठीक, उन्होंने इसे परखा है और इस पर काम कर रहे हैं, और अब उनके पास सबसे अच्छा मौका है जो उन्होंने इस पर अब तक प्रस्तुत किया था, क्योंकि यह बस ठीक उनके हाथों में है। और यही वो कारण है कि मैं इन भविष्यवक्ता के संदेशों को ला रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यह समय पर है। और यदि कोई है जो रोज रात को इसके पीछे आ सकता है, तो हम जल्दी आरंभ करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। और यदि मैं विषय को समाप्त नहीं करता हूं, तो मैं अगली सुबह घोषणा करूंगा। यदि हम आज रात को 19वें अध्याय 9वें पद से 20 पद में से होकर नहीं ले पाते हैं, तो हम इसे सुबह 10 बजे आरंभ करेंगे। हम आपको सभा के अंत में बताएंगे कि हम आगे कैसे करेंगे, और फिर कल रात इफिसियस की कलीसिया पर आरंभ करेंगे, जो 7 रातों तक चलता रहेगा। इफिसियस, इफिसियो कलीसिया का युग, और स्मुरना, और पिरगमुन, और थुआतीरा, और सर्दिस, और फिलाडेल्फिया, और लौदिकिया अगले रविवार को ले लेंगे। और ये जानते हुए मार्ग पर ये शानदार रत्न पड़े हुए हैं, तो उस समय पर मुझे अपने हाथों को उन्हें उठाने से रोके रखना मुश्किल है। बस वहाँ उन्हें पड़ा हुआ देखकर और महसूस करता हूँ कि आत्मा लोगों को खिला रहा है। ये तब मुझे वास्तव में तुरंत ही कूदने को लगाता है और लगता है कि उनके बारे में कुछ बताऊं, लेकिन बस मुझे रुकना पड़ता है और उन बातों को उनके युग में रखना होता है और जो उनके समय पर हैं। इसलिए यदि आप रात में आने से चूक जाते हैं, तो आप अवश्य ही टेप को सुने या किसी तरह से आप इसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह टेप हर जगह पर जाए। और मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है। केवल यही कारण है कि मैं इसे कर रहा हूं। और मैं यदि मैंने सोचता हूं कि इससे कलीसिया की सहायता होगी, और इस दिन में याद रखे, वो घड़ी जल्द ही आ रही है जहां हमारे पास ये सभाएं नहीं हो सकती है, और आपको इसे अभी करना है जब हमारे पास इसे करने के लिए समय है। देखिए, हम नहीं जानते कि अब वे किस समय पर इसे रोक दें, और इसलिए कलीसियाओं के बीच में एक संगठन होगा और वे खुद को एक साथ एकजुट करेंगे, कलीसियाओं के परिसंघ के प्रमुख का गठन करेंगे, जिसे वे पहले ही संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी इमारत बना चुके हैं, और हर संप्रदाय इसके अंदर है, और आपको उन संप्रदायों में से किसी का सदस्य बनना पड़ेगा या तो बेदखल होना पड़ेगा। और यही वो समय है जहां हमें अपना रंग दिखाना होगा और यह निश्चित करना होगा कि हम जानते हैं, ना ही हमें अनुमान है, लेकिन हम जानते हैं कि ये यहोवा यो कहता है जहां पर आप खड़े हैं। छोटी छोटी कलीसिया हमेशा ही कम संख्या में रही है, या एक छोटे छोटे समूह में रही है, जो एक छोटी सी डोरी, एक लाल डोरी, जिसे बाइबल में से मिटाया जाता रहा है, लेकिन ये हमेशा ही कलीसिया ही है, और हम इसे याद रखना चाहते हैं। अब बस एक छोटी सी टिप्पणी, इससे पहले हम फिर से पढ़ें। आज सुबह हमने यीशु मसीह के प्रकाशन के सर्वोत्तम दैविकता को लिया है, जो आज सुबह परमेश्वर उसे हम पर प्रकट किया। सर्वोत्तम दैविकता की नाई, वो महान मैं जो हूँ, ना ही मैं था या मैं होऊंगा, मैं हूँ हमेशा के लिए। और हमने इस प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में ध्यान दिया, प्रकाशित वाक्य के किसका प्रकाशन? यीशु मसीह का। वो पहली चीज क्या है जो वह खुद को यहाँ पर किस रूप में प्रकट करता है? स्वर्ग का परमेश्वर, ना ही एक त्रिगुरुआत्मक परमेश्वर, लेकिन एक परमेश्वर, एक परमेश्वर, और वह खुद को उसी तरह से प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और पहले अध्याय में वो इसे 4 बार बोलता है, जिससे कोई गलती नहीं होगी। पहली बात आपको जो जानना है कि वो एक भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक छोटा परमेश्वर नहीं है, वो एक उससे कम परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, और इसलिए प्रकाशन सामने आया, और हम अब भी इसके साथ आज रात आगे जारी रखेंगे। जैसे जैसे हम उसके अस्तित्व के 7 प्रकार के व्यक्तित्व की ओर जाते हैं, और ओह, होने पाए परमेश्वर इन वचनों की शिक्षा को देने के लिए सहायता करे। मैंने इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, लेकिन प्रतीक्षा करें जब तक यहाँ पुलपिट पर प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों पर एक साथ बैठे हुए हैं, और जो आपका आत्मा, आपका भाग, आपकी जीभ, पवित्र आत्मा जो आप पर है, दूसरे पर आने लगती है, और दूसरे पर से दूसरे पर, यह एक तरह से परमेश्वर की महान देह को सुलगाती है, और यह आग की लपटों को तैयार करती है, और वही है जहाँ पर प्रकाशन। अब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, यह सवाल मुझसे पूछा गया था, क्या महिलाओं को चाहिए और इत्यादि, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। आरंभ में कलीसिया ने उसकी गड़बड़ में जो आरंभ किया था, उन्होंने सभा के लोगों से सारी औपचारिकता को ले लिया और इसे पुलपिट में रख दिया। लेकिन परमेश्वर तो सभा के लोगों का परमेश्वर है, वह हर एक मानव जाति में काम करता है, वह हर एक हृदय में रहता है जिसमें वह रह सकता है, वह उन दान पाए हुए लोगों को ढूंढता है और उनके जरिए से कामों को करता है। अब यदि शैतान उन्हें एक चीज पर पकड़ नहीं सकता है, तो वह वहाँ पर आता है और बस बिना किसी बात का एक बड़ा ढेर बनाता है और लोगों को वहाँ से दूर ले जाता है। जैसे पौलुस ने कहा, जब आप एक साथ एकत्र होते हैं यदि आप सभी अन्य जबान में बोलते हैं और अनजान व्यक्ति वहाँ आता है तो क्या वह यह नहीं कहेगा तुम पागल हो मूर्ख हो? कोई तो अन्य जबान में बोलता है और ये और वो और सब कुछ व्यवस्था से बाहर है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसने कहा यदि कोई भविष्यवाणी करता है और हृदय के भेदों को प्रकट करता है तो वह कहेंगे सच में परमेश्वर आप लोगों के साथ है। लेकिन यदि कोई एक प्रकाशन के द्वारा अन्य भाषा के साथ बोलता है और इसके अनुवाद को देता है कलीसिया की कुछ तो उन्नति के लिए, तब सारी कलीसिया को इसके द्वारा उन्नति प्राप्त होती है। कुछ ऐसा जिसे बोला जाना है और परमेश्वर उसे अन्य भाषाओं में बोलेगा जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और इसे उस एक को दिया जाएगा और दूसरा एक इसका अनुवाद करेगा और एक निश्चित बात को बोलेगा जो ठीक उसी तरह से घटित होती है जैसा इसने कहा है। तब आपके बीच प्रभु का आत्मा होता है और ओह आओ हम उस बात के लिए प्रयास करें। मित्रों आइए उस आग को जलाए रखें। अब बस इससे पहले कि हम खोलें वचन के इस महान अधिनियम को, मैं सोचता हूं कि क्या यह ज्यादा होगा कि यदि हम बस खड़े हो सके और कुछ मिनटों के लिए हमारे मुद्रा को बदलें जब हम यह प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और उसे हमारे लिए प्रस्तुत किया 1900 वर्षों के बाद स्वर्ग के उस अचूक परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उसकी उपस्थिति के लिए जो दिन प्रतिदिन हमारे रोजाना के जीवन में हमारे साथ होती है। और हम यह जानकर बहुत खुश हैं कि इस गड़बड़ी के समय में जब संसार नहीं जानता है कि क्या करना है, वे जमीन में खड्डों को खोद रहे हैं, वे खुद को ठोस चीजों से किलाबंदी कर रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर वे परमेश्वर के प्रकोप से छिप नहीं सकते हैं। वहाँ केवल एक ही उपाय है प्रभु, और हम बहुत खुश हैं कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। ओह हम उसके लिए कितने खुश हैं कि उस परमेश्वर के मेमने के लहू की आज रात वो सर्व पर्याप्त सुरक्षा है। वो महायाजक जो आज रात महिमा में खड़ा हुआ है हमारे अंगीकार करने पर बिछवाई को कर रहा है, हम आज रात हमारे साथ होने के लिए खुश है। उस महान व्यक्ता के लिए, महान पवित्र आत्मा, महान अभिषेक प्रदान करने वाला, महान जीवन देने वाला। और अब प्रभु परमेश्वर जैसा कि मैंने आज रात इन लोगों को एक साथ इस छत के नीचे बुलाया है और हम यहाँ कलीसिया या उसके एक भाग के रूप में इकट्ठा हुए हैं, हम इस भवन के नाम पर या किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हुए हैं। वो आत्मा जिसने उसकी देह का अधिकार किया और उसके दिमाग का और उसे नियंत्रित किया, आज रात हमारे अंदर आकर और वचन का अनुवाद करने दो और वचन को प्रचार करने दो और इसे हमारे भूखे हृदयों को दे दे जैसे हम उस पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम उसके नाम में उसकी महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन। बैठ जाए। अब आपके पास अपने अपने बाइबल हैं, प्रकाशित वाक्य के अध्याय एक को खोलें और नवे पद से आरंभ करें। अपनी कलम और कागज खोलें और मैं आपको कुछ तारीख और इत्यादि देने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ जाऊंगा। अब यह वास्तव में आज सुबह ये उपदेश के वर्ग से भी अधिक था। प्रकाशन के दैविकता के ऊपर बुनियाद को रखते हुए परमेश्वर जो मसीह में प्रकट हुआ, कितने लोग इसे विश्वास करते हैं? परमेश्वर मसीह में प्रकट हुआ था, यहोवा मसीह में प्रकट हुआ। अब परमेश्वर कहाँ प्रकट होना है? उसकी कलीसिया में, उसके लोगों के साथ, हम में वही आत्मा, वही कार्य, वही प्रकटीकरण, वही प्रेम, वही क्षमा, वही सहनशीलता, सभ्यता, धैर्य, शांति, दया, ये सब जो मसीह में था उसकी कलीसिया में है। याद रखे, इसे ध्यान में रखना, वो सब जो परमेश्वर था वो मसीह के अंदर उंडेल दिया था, वो परमेश्वरत्व के देह की परिपूर्णता था, और वो सब जो मसीह था उसे कलीसिया के अंदर उंडेल दिया था। परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर की त्रिएकता, परमेश्वर तीन अलग अलग आचरणों में प्रकट हुआ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रकाशन हमें दिखाता है कि वो तीन परमेश्वर नहीं है, ना ही वह तीन टुकड़ों में कटा हुआ है, लेकिन वो एक परमेश्वर है जो पितृत्व के दिनों में परमेश्वर था, पुत्रत्व के दिनों में परमेश्वर था, वो पवित्र आत्मा के पूरा होने के दिनों में परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है, ना ही तीन अलग अलग, तीन व्यक्ति नहीं, तीन व्यक्तित्व नहीं, वह एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। बिना एक व्यक्ति के हुए आप एक व्यक्तित्व नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा वो तीन व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो तीन व्यक्तित्व है। आप इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति है। एक व्यक्तित्व को बनाने के लिए एक व्यक्ति को होना चाहिए, इसलिए वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, अल्फा ओमेगा, वो जो था, जो है और आने वाला है। ओह, वो तो बस सब है। मैं इसे पसंद करता हूँ। उसके स्वभाव की ओर देखें, उसका जीवन, उसके कार्यों को देखें। इसे यहीं इस भवन में प्रकटीकरण में आना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये उसके दिन पर था। ना ही इसे पक्षपात से कह रहा हूँ, परमेश्वर ये जानता है, ना ही केवल यहाँ पर बल्कि संसार भर में। मुझे खुशी है कि ऐसा है। तब हम जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही आत्मा है जो हमारे साथ साथ चल रही है और ये दिखा रही है कि वो यहाँ पर है। यह हम नहीं है, यह तो वो है। हम उन चीजों को नहीं कर सकते हैं, यह तो परमेश्वर है। इसके अलावा वैज्ञानिक संसार में उसने अपनी तस्वीर को लेने की अनुमति दी, हमारे साथ, हम में, हमारे चारों ओर, हमारे ऊपर, हमारे जरिए से, हमारे भीतर और बाहर काम करते हुए। ओह, कितना अद्भुत है। वे अक्सर एक छोटे से गीत को गाते थे, मैं हूँ जो मूसा से बोला अग्नि की जलती झाड़ी में, मैं हूँ अब्राहम का परमेश्वर चमकता हुआ और भोर का तारा, मैं शारण का गुलाब हूँ। ओह, तुमने कहा कि कहाँ से मैं आया, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या तुम उनका नाम बता सकते हो? ओह, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से तुमने कह दिया कि मैं आया, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या तुम उसका नाम बता सकते हो? मैं हूँ अल्फा ओमेगा, अंत से आदि, मैं हूँ सारी सृष्टि, और यीशु वो नाम है। ओह, कितना अद्भुत वो प्रकाशन। अब याद रखें, आप इसे धर्मशास्त्रियों के जरिए से प्राप्त नहीं कर सकते, यह इस तरह से नहीं आता है, यह केवल एक प्रकाशन के रूप में आएगा। पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम को उपयोग करते हुए केवल प्रकाशन के रूप में दिया जा सकता है। यीशु और परमेश्वर एक ही व्यक्ति होने के नाते केवल एक प्रकाशन के रूप में आ सकता है। संपूर्ण बाइबल प्रकाशन पर बनी है, संपूर्ण कलीसिया प्रकाशन पर बनाई गई है। मत्ती 17 कहता है, क्योंकि मैं कहता हूँ इस चट्टान पर, आत्मिक प्रकाशन पर, मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। हमने हर किसी को चुनौती दी कि वह हमें कहीं भी इतिहास या वचन में से दिखाए जहाँ कभी भी किसी व्यक्ति ने कैथोलिक कलीसिया के बाहर से लेकर मार्टिन लूथर के दिन तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया था। तब प्रोटेस्टेंट कलीसिया यह और हर बुराई, सुनना, जैसा कि हम कलीसिया के युगों में जाते हैं, हर एक बुराई जो उस पहली कलीसिया में थी बढ़कर अगली में आ गई, बस यह आगे बढ़ती गई। अतः जब तक ये अंतिम दिन में पूरी तरह से विश्वास को त्याग देने में समाप्त नहीं हो गई, हर एक बुराई बस एक कलीसिया में आगे बढ़ते जाने लगी। हर एक छोटा विवाद जो आरंभ हुआ उत्पत्ति की तरह, वो दाखलता जो बढ़ने लगी, उसने कलीसिया में होते हुए अपना रास्ता बनाया और अंतिम दिनों में सामने आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा, धन्य है वे जो उस दिन में बच निकलते हैं। जी हाँ श्रीमान, जो इन सभी चीजों से बच निकलते हैं। अब परमेश्वर से मांगे, जब हम प्रकाशन पर बात कर रहे हैं तो उससे मांगे कि आपको इसका प्रकाशन दे, क्योंकि इसे केवल प्रकाशन के द्वारा जाना जा सकता है और आप केवल प्रकाशन से बचाए जा सकते हैं। आपको इसका बौद्धिक रूप से ज्ञान है, लेकिन आपको बचाया नहीं जा सकता जब तक आपको ये प्रकट नहीं होता। कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, यही है जो बाइबल कहता है। कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता है जब तक वो पवित्र आत्मा को नहीं पा लेता। हो सकता है वो कहे, पास्टर ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहती है, वो सच्चे हैं, कलीसिया ऐसा कहती है, यह सच है, लेकिन आप अपने आप में नहीं जानते जब तक पवित्र आत्मा इसे आपके लिए प्रकट नहीं करता है और वह आप में बन जाता है। कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं। वे किस तरह से एक बाइबल को बनाने जा रहे हैं, इसे निचोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे यहूदियों, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को अनुरूप बैठाते हैं, जबकि इसमें इतना फर्क है जैसे दिन और रात का होता है। सोचा कि यहूदी उससे बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है इसे आने में बस कुछ ही समय है जहां उन सबको इस बड़े विश्वास त्याग में जाना है। तो और इन सारी बातों को बस याद रखें, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन केवल एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, हम वहाँ उजियाले को चमका सकते हैं। हो सकता है खुद को एक शहीद की नाई देना पड़े और यहाँ से चले जाएं, तो यह एक ही तरीका है कि हम इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुतों को ऐसा करना होगा। और इसलिए इसी तरह से उन्होंने इस बाइबल को तैयार किया है और उन बातों को डालते हैं जिससे कि हम इसके अंदर चले जाएं। यदि मैं इसे ध्यान नहीं देता हूँ तो मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर जो पहली चीज है, यह आरंभ होती है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। वो कौन है? अब यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम ये जानते हैं। इसे कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन कहें। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसका एक नाम है। वो नाम आकाश के नीचे दिया गया एकमात्र नाम है जिसके द्वारा आपको बचाया जाना अवश्य है, वो यीशु मसीह है। वे उस तालाब पर इस नाम को लेने से क्यों डरते हैं जिसे मैं सोच नहीं सकता हूँ? देखा, ऐसा इसलिए है कि वो आत्मा वहाँ इस पुराना युग में बहुत पहले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और उस गहरे अंधकार के युग में सीधे अपने आप को वहाँ आकर मिला दिया और इसे एक शिक्षा बना दिया और इस अंतिम दिन में इसके साथ ठीक सामने आ गया। अब बस इतिहास और बाइबल को देखें, जैसा कि हम इस सप्ताह इसमें से होकर जाएंगे, कैसे ये उन चीजों को बाहर लाता है। अब अगली चीज यह मसीह के द्वारा यूहन्ना को एक दूत के जरिए से दिया गया था उसके अपनों को देने के लिए। किसको? कलीसिया को। इसे उसके कलीसियाओं को प्रकट करने के लिए दिया गया था और उसके हाथ में सात तारे थे जो सात कलीसियाओं के सात संदेशवाहक थे। और हर मनुष्य जिसके पास कभी एक संदेश होगा उसके पास ये होगा, जो वही सच्चा संदेश है जो आदि में आरंभ हुआ होगा। और अधिक जब हम वहाँ गहरे स्थानों पर उतरते हैं यह देखने के लिए कि परमेश्वर ने इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया है, ये अद्भुत है। इनसे बस आप चिल्ला उठेंगे। मैं इसे पढ़ रहा था और फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ चलने लगा और रोने लगा, वापस चलने लगा और फिर से बैठ गया, फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ चला। मैं इसे जानकर तब बहुत ही आनंदित हुआ। किस तरह परमेश्वर हमेशा हम पर इतना दयालु रहा है कि हमें उन बातों को देखने दिया इस घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? यह जैसा यीशु ने कहा, एक व्यक्ति ने सब कुछ बेच दिया, उसे एक विशेष हीरा खरीदना था। आपको संसार की चीजों को बेच देना है और वो सब कुछ जो कुछ भी और इससे संबंधित है इसे पाने के लिए, यह सही है। आप ठीक उस पर अपना पूरा लंगर डाल दें। यह उसके वचन के प्रकाशन को देखने के लिए प्राण का लंगर है। अब जो कोई भी इसे पढ़ता है वह आशीषित है, क्या ये सही है? और हमने आज सुबह कहा, यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं, कोई भी जो इसे पढ़ते हुए सुनता है वह आशीषित है। अब यह उन लोगों के लिए एक आशीष से आरंभ होता है जो यहाँ तक कि बैठकर और इसे पढ़ा जाता है उसे सुनेगा, और जो कोई भी उसमें कुछ भी जोड़ने या इसमें से कुछ भी निकालने की कोशिश करेगा उस पर शाप है। फिर यदि बाइबल साफ साफ प्रकट करती है कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, तो हाय उस पर जो इसे वहां से निकाल देगा। जी हाँ, यह एक प्रकाशन है। जो कोई भी कुछ भी जोड़ेगा यह पूरी तरह से प्रकाशन की कसौटी है। यह परमेश्वर की अंतिम किताब है, उसके अंतिम वचन उसका, और कोई भी प्रकाशन जो इसके विपरीत आता है तो एक झूठी भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। और याद रखें, यह बाइबल की एकमात्र किताब है जिसे मसीह ने स्वयं समर्थन किया है। इस पर सोचें, एकमात्र किताब जो उसके स्वयं का प्रकाशन है, एकमात्र किताब जिसे उसने अपनी मोहर लगाई और अपनी आशीषों को और उसके शाप को डाला, उन लोगों के लिए आशीष जो इसे ग्रहण करेंगे, उन लोगों के लिए शाप जो इसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब हम पत्मुस के टापू पर जाते हैं। अब इसे आरंभ करने के लिए नौवां पद लेंगे। पहले स्थान पर हम इसे कहना चाहते हैं, इसका शीर्षक है पत्मुस दर्शन जो मृत्यु के बाद घटित हुआ, 95 और 96 एडी के बीच घटित हुआ। यह स्थान पत्मुस के द्वीप पर था। यह स्थान एशिया माइनर के तट से 30 मील की दूरी पर है, पश्चिम में एफिसियो कलीसिया के सामने, इजिनियन सागर में जो भूमध्य सागर की सीमा है। यही वो स्थान है जहाँ पर यह बसा हुआ है। सोचे अब एक छोटा सा द्वीप जो एजियन सागर पर एशिया माइनर के तट से 30 मील दूर है, ठीक जो सामने है फिलेडेल कलिसिया या एफिसस कलिसिया के सामने, जहाँ पर पहला संदेश दिया गया था, उस समय पर योहन्ना पास्टर था। दूसरे शब्दों में सीधे पूर्व की ओर देखा और वह सीधा कलिसिया की ओर देख रहा था जहाँ पर वो था, और पहला संदेश जो उसकी कलिसिया के लिए था, जो एक कलिसिया युग का प्रतिनिधित्व करता था। तो ठीक है, यह दर्शन संत योहन्ना को दिया गया था जो उस समय एफिसियंस कलिसिया का पास्टर था। तब इस टापू की क्या परिस्थिति थी, ये कहाँ पर था और क्या स्थिति थी? तो ठीक है, ये इतिहास में एक चट्टानी टापू के रूप में जाना जाता है जो सांपों, बिच्छुओं, छिपकलियों और इत्यादि से भरा हुआ है। इसका घेराव 30 मील था और चट्टानों से भरा हुआ। इसका इस्तेमाल योहन्ना के दिनों में एक अलकतरा टापू जेल के रूप में किया गया था, एक स्थान जहां रोमन सम्राट के साम्राज्य ने अपराधियों को, जो वास्तव में बुरे अपराधी थे, उनको देश निकाला किया गया था, जिसे वे उन्हें जेल और इत्यादि में नहीं रख सकते थे। वे वहां पर उन्हें मरने के लिए उस टापू पर रख देते थे, उनके मरने तक उन्हें वहीं छोड़ देते। सवाल, योहन्ना वहां क्यों था? एक पवित्र व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक अच्छे नाम वाला व्यक्ति, अच्छे चरित्र का, जो कभी परेशानी में नहीं था, यह मनुष्य वहाँ क्यों था? बाइबल ने कहा परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के लिए। अब हम परिस्थिति जान गए हैं। पतमुस टापू एजियन सागर में, जो उस तट से 30 मील दूर है, जो लगभग 30 मील चारों ओर फैला हुआ था, चट्टानी टिपकलियों और बिच्छुओं और इत्यादि से भरा हुआ, और एक जेल घर के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अलकतरा टापू है। वे एक कैदी को लेते जिसे वे यहाँ जेल में नहीं रख सकते, वे जो बहुत ही खूंखार अपराधी होता, वे उसे अलकतरा टापू पर छोड़ देते।
और अब उन्होंने इस संत योहन्ना, जो दैविक जेलों में से अंतिम और केवल वो ही एक स्वाभाविक मृत्यु मरा था, योहन्ना टापू पर जाने से पहले, जिसे एक जादू टोला करने वाले होने का आरोप लगाया गया था और 24 घंटे तक तेल के एक कुंड में उबाला गया था, वो बिल्कुल भी नहीं जला था। आप किसी व्यक्ति के पवित्र आत्मा को उबाल नहीं सकते हैं। उसे 24 घंटे तक एक कुंड में उबाला गया, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, और कहा इसका कारण जो रोमन लोगों ने बताया कि वो एक जादू टोना करने वाला था और तेल को जादू करके समूह कर दिया है। शारीरिक दिमाग और क्या सोच सकता है? अब आप देखें, जब वे हमें मनों को पढ़ने वाला और पूर्वानुमान लगाने वाला और बाल जबूब कहते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि वो पुरानी आत्मा कहाँ से आती है? लेकिन आप देखते हैं कि असली आत्मा कहाँ से आती है? यह कलीसिया का युग है। देखा, 24 घंटे एक गर्म उबला हुआ उबलते हुए तेल में, और यहाँ तक उसे छुआ भी नहीं। ओह, कैसे परमेश्वर ने उसे अपने पवित्र आत्मा के साथ रक्षा किया। उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने उसे 2 वर्ष के लिए टापू पर रखा, और उस समय पर परमेश्वर ने उसे वहाँ अपने आप में अकेले रहने दिया। उसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, जैसे जैसे प्रभु के दूत ने उसे इसे बताया, और उसके बाद जैसी ही वह पूरी हो गई, वह अपने देश वापस आ गया और इफिसियस की कलीसिया में पास्टर का काम किया, और वो मरा और इफिसियस में दफन किया गया। योहन्ना वो दैविक। ओह, अब क्या ही स्थिति है। तो ठीक है, कलीसिया तब योहन्ना के तहत या बड़ी सतावट के तहत योहन्ना 9वां पद लिखता है, मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई क्लेश में और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। दूसरे शब्दों में उसने परमेश्वर के वचन को लिया और इसे साबित कर रहा था कि यह परमेश्वर का वचन था, और मसीह उसके जरिए से वापस आकर गवाही दी कि वो सही था। आप वहीं पर हो, परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रकटीकरण में आया था, जिससे साबित होता है कि वह परमेश्वर का सेवक था। तब वे उससे इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें उसे ये बोलना था कि वह एक जादू टोना करने वाला है, उसने तेल को जादू से सम्मोहित किया है, और इसलिए उसे कोई हानि नहीं पहुंचती है, और वह लोगों पर जादू टोना करता है, और वे चंगे नहीं होते थे, और वह पूर्व अनुमान करने वाला था, और वो नहीं सकता, एक तरह का बुरा व्यक्ति है, कोई बीमार, एक बुरा आत्मा है, और यही वो कारण है कि उन्होंने उसे वहां पर रखा, सोचा कि वह समाज के लिए खतरनाक था, लेकिन वह केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था और उस सारी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का एक उद्देश्य था, उसका उपयोग नहीं कर सकता है और सारी सतावट और इत्यादि, क्योंकि संत आते थे कहते, ओ भाई योन्ना, हम इस बारे में क्या करें और हम क्या करें। योन्ना एक भविष्यवक्ता था, हम ये जानते हैं, और इसलिए वे ये सवाल पूछते थे। इसलिए परमेश्वर ने तब रोमन साम्राज्य को उसे लेने दिया था कि उसे उठाकर और उसे वहाँ टापू पर डाल दे, और कहा, अब आगे बढ़ो योन्ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो घटित होने जा रहा है। चेलों में से वो अंतिम चेला था, वहाँ और कोई उसे लिखने के लिए नहीं था सिवाय योन्ना के, तो उन्होंने उसे वहाँ पतमुस टापू पर रखा, 95 AD से लेकर 96 AD तक, और उसने इसे लिखा और उसने कहा, मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई और क्लेश में तुम्हारा सहभागी हूँ। अब उसने बड़े महासंकट की बात नहीं की, वो बड़ा महासंकट नहीं था और ये कलीसिया के लिए नहीं आता है। बड़ा महासंकट यहूदी के लिए आता है, ना ही कलीसिया के लिए। यह महासंकट बड़ा महासंकट नहीं था। अब 10वां पद, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और मेरे पीछे से सुना आवाज, एक तुरी की आवाज को सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। अब आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं जब तक पहले आत्मा में नहीं आते हैं। परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता। आपके सारे प्रयास तब तक व्यर्थ हैं जब तक आप पहले इसे आत्मा में नहीं करते। यदि मैं गीत गाऊंगा तो मैं आत्मा में गाऊंगा, यदि मैं प्रार्थना करूंगा, पौलुस ने कहा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, और फिर यदि कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास आती है जो किसी भी तरह से अच्छी है, तो वो मुझे आत्मा के द्वारा प्रकट की जानी है और वचन के द्वारा पुष्टि की जानी है, जो परिणाम को लाता है उसके द्वारा प्रकट होता है। अब जैसे दूसरे शब्दों में, यदि मैं कहूँ यीशु मसीह ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं पश्चाताप करूँ, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लूँ, तो मुझे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पहली चीज जो मुझे करना है वो है पश्चाताप। यह मुझ पर प्रकट हुआ है कि यह सच्चाई है। उसके बाद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, तब परिणाम ऐसा है, मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। यदि मैं बीमार होता हूँ और उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं विश्वास करूं और कलीसिया की प्राचीन मेरा तेल से अभिषेक करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना से बीमार बचाए जाएंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं आपके निर्देशों का पालन करता हूं, कुछ प्राचीन मुझ पर प्रार्थनाओं को करें, मुझे तेल से अभिषेक करें, इससे बात खत्म हो जाती है। बस ऐसा ही है, इससे सब समाप्त हो जाता है। ओह, आप कहते हैं, आप भले ही कोई फर्क महसूस नहीं करता हूं, यीशु का जन्म नहीं हुआ था जब परमेश्वर ने उसे दुनिया की नींव से पहले घात किया था, जब वो परमेश्वर का मेमना था, दुनिया की नींव से पहले घात किया गया, लेकिन परमेश्वर के उसके मन में वो पहले से ही घात किया गया था। मैं ना तो यहाँ पर था, ना तो आप थे, लेकिन परमेश्वर की किताब में यदि हमारा नाम कभी वहाँ पर था तो इसे दुनिया की नींव से पहले डाला गया था। जब परमेश्वर कुछ भी कहता है तो इस बात को जगह लेना है। इसलिए जब आप परमेश्वर की योग्यता को पूरा करते हैं तो बस याद रखें, परमेश्वर खुद को प्रकट करेगा और बाकी की बात को देख लेगा। आप केवल आगे बढ़ें, यह एक समाप्त हुआ कार्य है। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं है? ओह मेरे प्रभु, सोचें, बस परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करो और मैं यह करूंगा, ठीक है, यदि मैं यह करता हूं तो उसे ऐसा करना है। अब शैतान कहता है, देखो वह देरी करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानियल ने एक बार प्रार्थना की और ये 21 दिन पहले की बात थी। इससे पहले दूत उसके पास पहुँचे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ था। वह जानता था कि वह किसी भी तरह से आएगा, इसलिए वो उसके वहाँ पहुँचने तक रुका रहा। यही तो वो विचार है। ओह, यही है जब आप विश्वास कर रहे होते हैं। अब हमें इस बात को यही छोड़ना होगा, हमें ठीक तुरंत बाद ही एक चंगाई सभा को करना है, क्या नहीं करना है? ये सही है, जी हाँ, विश्वास की। लेकिन हम एक प्राण की चंगाई सभा चाहते हैं, ताकि अंदर से चंगा करें, क्योंकि यही है जो अंत में जाने वाला है। आपको अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन न तो लुप्त होता है और न ही बूढ़ा होता है, यह बना रहता है, वैसा ही रहता है। अब इससे पहले कोई भी बात जगह ले, वो आत्मा में आ गया। पहली चीज जो उसने की, वह पतमुस नामक टापू में था। ये सारी चीजें जो उसने की थी, और उसने कहा, मैंने एक आवाज सुनी, और ये सारी अन्य बातें। लेकिन इससे पहले कोई भी बात जगह ले, वह आत्मा में था। और यदि आप ध्यान दें कि आपकी बाइबल में बड़ा अक्षर आत्मा, स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आमीन, वह आत्मा में आ गया। ओह, मैं तब ये सोचता हूँ कि ये अद्भुत है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। किस दिन पर? प्रभु के दिन। अब वहाँ पर एक बड़ी चर्चा है, आइए बस कुछ मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब जैसा कि हमने आज सुबह कहा, किसी ने कहा कि संत मती 17 का प्रकाशन पतरस था। कैथोलिक कलीसिया ने कहा उसने पतरस पर अपनी कलीसिया को बांधा, वह पहला पोप था। वह भला कैसे एक पोप हो सकता है और विवाहित हो सकता था, देखा। और कहते हैं पतरस रोम चला गया, वहाँ पर दफनाया गया था। फिर मुझे एक स्थान बताएं, इतिहास या कहीं भी, कि पतरस कभी रोम गया हो, समझे। पौलुस गया लेकिन पतरस नहीं, तो ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि ये सारी संस्था और इत्यादि जो अब बढ़ चुके हैं, समझे। लेकिन और आज लोग, आप हर जगह जाते हैं, वे कुछ बड़ी कलीसियाओं के पास कुछ किले मिली हैं जो यीशु के हाथ में थी। आप जानते हैं कि उन्हें कितनी किले मिली हैं, वास्तविक किले आज 19। उन्हें हड्डियां मिली हैं, उन्हें कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और वे इसे छूते हैं और उन्हें संभालते हैं। और हमारे पास वे चीजें नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मसीह जीवित है, वह हम में है, ना ही कोई कील या क्रूस का टुकड़ा या हड्डी का टुकड़ा या कुछ भी, और वह जीवित परमेश्वर है, अभी हम में जी रहा है, स्वयं को प्रगटीकरण में लाते हुए। हमारे पास केवल एक यादगार का एक लेख है, वो है प्रभु भोज, जो उसकी मृत्यु की स्मृति है। लेकिन जहाँ तक स्वयं मसीह की बात है, वह हमारे साथ और हम में है, और यही वो बात है जिसे हम लहराना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा की महिमा है, संसार के लिए लहराना चाहते हैं। इसे लहराते रहें जब तक उजियाला बाहर नहीं जाता, तो ठीक है। अब तो आप देखते हैं, हमने मार्ग के उस दूसरे बाजू को लिया। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा यह करने की कोशिश की है और हमारे प्रभु ने हमेशा मेरे लिए प्रकट किया है, वहाँ एक कदम आगे और एक कदम आगे, लेकिन मार्ग के ठीक बीच में सत्य रखा होता है। क्या आपने ध्यान दिया यशाया में, जहाँ उसने कहा वहाँ एक राजमार्ग होगा, यशाया 35 में। और आपको याद है कि हमारे बहुमूल्य नाजरीन भाई उस गीत को किस तरह गाया करते थे, आप जानते हैं, पवित्रता का राजमार्ग, पवित्रता का राजमार्ग। अब यदि आप अपनी बाइबल को सही से पढ़ें, तो ये ऐसा नहीं कहता पवित्रता का राजमार्ग, यह कहता है एक राजमार्ग होगा और एक मार्ग होगा, और इसे कहा जाएगा पवित्रता का राजमार्ग नहीं, लेकिन पवित्रता का मार्ग। और एक जोड़ है जो आपके वाक्य को पूरा करता है, समझे। यह एक राजमार्ग होगा और मार्ग होगा, और इसे पवित्रता का मार्ग कहा जाएगा, पवित्रता का राजमार्ग नहीं। देखो, एक सड़क बनती है, एक मार्ग, एक अच्छी सड़क बनती है तो सबसे ऊंचा भाग मध्य में होता है, और इससे ये सारे कूड़े कचरे को दोनों तरफ से धोकर साफ कर देता है। ऐसा ही है, जब कोई मनुष्य वास्तव में मसीह के पास आता है, तो वह अपनी आंखों को मसीह पर केंद्रित कर लेता है। यदि वह थोड़ा बहुत भावुक होता है, तो वह कट्टरपंथी बन जाएगा। यदि वह थोड़ा सा ठंडा है, तो वह इस दूसरी ओर होगा, और वो तब एक ककड़ी होगा उस ओर। देखो उसकी बुद्धिमत्ता को। लेकिन वो मुख्य बात सड़क के ठीक बीच में होती है, आप में उचित आत्मा के साथ, जो आपको गर्म और गतिशील बनाए रखती है। आमीन। और इतना जानते हुए कि अपने आप को आत्मा के नीचे आज्ञा में बनाए रखें, ताकि वैसे ही चलाए चलें जैसे आत्मा चलाती है, ना ही उससे पहले या ना ही बाद में, बस जैसे आत्मा चलाती है। कैथोलिक कलीसिया ने कहा पतरस वो प्रकाशन था, प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने कहा यह मसीह था, लेकिन बाइबल सिखाती है यह वो प्रकाशन था, जो प्रकाशन उसने दिया, परमेश्वर ने उसे दिया, जो मसीह का था। तू वो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। धन्य है तू शिमोन, योना के पुत्र, मांस और लहू ने तुझे इसे प्रकट नहीं किया, ना ही कोई मनुष्य ने, सेमिनरी ने, या ईसाई मत, किसी ने भी इसे तुम्हें नहीं सिखाया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, उसने तुम्हें यह प्रकट किया है। तू पतरस है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। अब हम यहाँ एक और स्थान पर आए हैं, जहाँ उनके पास दो अलग अलग विचार हैं। अब मैं गलत हो सकता हूँ, यदि मैं हूँ परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट से असहमत होऊंगा, जो कहता है यह सातवां दिन था जिसमें वो था, वह प्रभु का दिन था। सेवंथ डे एडवेंट के भाई लोग और उनमें से कई लोगों का दावा है कि यह वो शब्द का दिन था जिसे उसने प्रभु का दिन कहा था। मसीह कलीसिया इसे प्रभु का दिन कहती है, वो रविवार पहला दिन है, और उसने बहुत बार ध्यान दिया है कि कलीसिया आज अभी भी प्रोटेस्टेंट लोग इसे प्रभु का दिन रविवार इसे इसी तरह से हवाला देते हैं। यह वचन अनुसार नहीं है। बाइबल में रविवार सप्ताह का पहला दिन था, न कि प्रभु का दिन, न ही यह सातवां दिन था, सबत का दिन। यह इसके लिए असंभव होगा कि या तो उन दिनों में से कोई एक दिन हो, क्योंकि यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखने में 2 वर्ष लग गए। ये कौन सा दिन था? वहाँ तो बहुत से सातवें दिन और पहले दिन के पर्व आए। बाइबल में प्रकाशित वाक्य को 95 एडी से 96 तक 2 वर्ष लिखा गया था। यह प्रभु का दिन था। प्रभु का दिन बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे इसने कहा था, और यही है जो वो था। योहन्ना को प्रभु के दिन आत्मा के अंदर लाया गया था। यह मनुष्य का दिन है, लेकिन प्रभु का दिन आएगा। आगे वचन में बढ़ते हुए हम देखेंगे कि वह प्रभु के दिन में था, आत्मा में उठाया गया और प्रभु के दिन पर ले लिया गया। आमीन, यह सही बात है। देखो, यह प्रभु के दिन में था। बाइबल प्रभु के दिन की बात करती है, हम इस पर थोड़ी देर में जाएंगे। बहुत से वचन हैं। पहली चीज, सबत का दिन, जैसा कि हम इसके बारे में बात करते हैं, सबत का दिन एक निश्चित दिन के लिए नहीं बताता है। शनिवार को सबत के दिन रखने की हमारे पास कोई आज्ञा नहीं है। नए नियम में हमारे पास सबत के लिए पहले दिन को रखने की कोई आज्ञा नहीं है। बाइबल ने इब्रानियों के 4 अध्याय में कहा, और यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यह सही बात है, लेकिन एक विश्राम बना रहता है। यह सबत को मानने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने भी अपने विश्राम में प्रवेश किया है। हम अपने कामों को समाप्त करते हैं जैसे परमेश्वर ने उसके कामों से विश्राम किया। देखो, ओह प्रभु की स्तुति हो, मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप से आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान दें, सबत के दिन में परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी बनाई और 7वें दिन उसने एक विश्राम में प्रवेश किया, और कभी भी इसके बाद उसने वापस आकर और संसार को नहीं बनाया। तब उसने इसे यादगार के रूप में लोगों को दिया, क्योंकि आप इसे अब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब आप सबत को याद रखते हैं तो फिर से तब संसार के लिए दूसरी ओर रविवार है, समझे? तो इसे दर्शाया कि ये लोगों के लिए था, इसराइल के लिए एक अवधि और समय था, लेकिन तब परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का दिन बना रहता है, क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया है उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। यद्यपि उसके काम, मैं इब्रानियों 4 से हवाला दे रहा हूँ, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यही यो कहा है, इस तरह से कि परमेश्वर ने 7वें दिन, और तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर दाऊद की, आप जो इसे लिख रहे हैं इब्रानियों 4, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जब तुम पहले सुनते हो, या कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम के दिन में प्रवेश कर देता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती, लेकिन वहाँ बने रहते हैं एक विश्राम या एक विश्राम दिन को मानने वाले। वो शब्द विश्राम, सबत, हमारे लिए एक अनोखा शब्द है जिसका अर्थ है विश्राम। यह एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है विश्राम का दिन, एक सबत का दिन। काम न करें, विश्राम करें। क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती, लेकिन सबत का विश्राम बाकी है, या सबत को मानने वाले। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हम कभी भी इस पर पीछे जाकर सप्ताह के अगले दिन में और इसे फिर से आरंभ नहीं करते। हमने एक विश्राम में प्रवेश किया है। यीशु ने धन्य पहाड़ी उपदेश पर बात करते हुए कहा, तुमने उन पुराने समय के लोगों को कहते सुना होगा, तुम हत्या नहीं करना। मैं तुमसे कहता हूँ, जो भी अपने भाई से बिना कारण क्रोधित होता है वो हत्या कर चुका। तुमने सुना है पुराने समय के लोगों को कहते हुए, तू व्यभिचार नहीं करना, यही वो आज्ञा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई भी स्त्री की ओर क्रूर दृष्टि डाले वो अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। क्या ये सही है? सो ये सारी बातें यादगार थी, केवल चिन्ह चमत्कार आने वाले वास्तविक समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब यीशु ने समाप्त किया, मत्ती 11 धन्य पहाड़ी उपदेश, उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण में विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या ये सही है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण में विश्राम दूंगा। यदि आपने 1 दिन, 10 दिन, 5 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 90 वर्ष परिश्रम किया है और आप थक गए हैं और थक चुके हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे पाप के सारे भार को ले लूंगा और तुम में प्रवेश करूंगा और तुम्हें सिद्ध विश्राम और संतुष्टि को दूंगा। अब वो विश्राम क्या है? आओ अब इसे थोड़ा सा जानेंगे। देखें ये क्या है? उनमें से कुछ ने कहा, क्योंकि आप कलीसिया जाते हैं? नहीं। आपने अपना नाम किताब पर डाला? नहीं। ठीक है, एक विशेष प्रकार का पानी का बपतिस्मा? नहीं। इसे थोड़ा सा जानें और देखें ये क्या है। क्या आप इसे ठीक यहीं पर करना चाहेंगे? जब हम रुके हुए हैं, हम देखेंगे कि यूहन्ना कहाँ पर चला गया, वो किस दिन के अंदर वह चला गया। जब यीशु धरती पर मरा और उसका काम समाप्त हुआ था तो उसने कहीं पर तो प्रवेश किया। अब आइए यशाया 28वें अध्याय और 8वें पद पर वापस जाएंगे। मेरा विश्वास है कि यही है। अब यशाया 28:8 और आइए यशाया 28 पढ़ें। नबी ने इसके घटित होने के 712 वर्ष पहले ही बोल दिया। अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि सच्चा सबत क्या है, सच्चा विश्राम क्या है? वहाँ है ये, अब यहाँ है ये, जहाँ नबी ने इसके बारे में बात की। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कहाँ पर पूरा हुआ है। देखें यशाया 28:8, क्योंकि सारी नबी इन दिनों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं। प्रभु भोज लेने वाले लोग जो शराब पीते हैं और झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा, वह किसको ज्ञान सिखाएगा? आप आज किसे ज्ञान सिखा सकते हैं? कितने लोगों ने आज बिली ग्राहम को सुना? यह एक अद्भुत उद्देश्य था जिस पर उन्होंने प्रचार किया कि कैसे एक व्यक्ति झूठ पर विश्वास कर सकता है और बस उस झूठ पर बने रह सकता है और यहाँ तक कि खुद को सही ठहरा सकता है और ये सोच सकता है कि वे वही कर रहे हैं जो सही था। अमेरिका की जनता ले रही है, उसने कहा, यह कहते हैं एक बुद्धिमान मनुष्य की छन्नी और धूम्रपान करने वाले मनुष्य की सिगरेट शैतान के झूठ में से एक को लेते हुए, और बजाय इसके वो उसे मूर्ख बना रहा है। जो कुछ भी वो है ऐसी चीज का सेवन करता है और उसे एक बुद्धिमान बनाने की कोशिश करता है, वो यहाँ तक मूर्ख है जो इसे धूम्रपान करता है। जबकि ये मृत्यु और कैंसर और इत्यादि सबसे भरा हुआ होता है और फिर भी वह अपने फेफड़ों के अंदर इसके कष्ट को मारता है, वह एक मूर्ख है। नहीं, यह एक बुद्धिमान मनुष्य की छन्नी नहीं है और न ही ऐसी कोई चीज है। एक बुद्धिमान मनुष्य ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करता है। और ट्रेल 92 में होने तक इसमें कोई जीवन नहीं होता है, या ऐसा कुछ तो मसीह के बाहर कोई जीवन नहीं होता है। यही वास्तविक जीवन है। पुरुष और महिलाएं को इन चीजों को पीने से क्या होता है? क्योंकि वे वहाँ उस प्यास के लिए संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस प्यास को परमेश्वर ने वहाँ रखा है, जिससे वे उसके लिए परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएं और वे इसे संसार की चीजों से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि हमारे पास वे चीजें हैं। यही वो कारण है कि लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे उस प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्यास परमेश्वर के लिए है, और शैतान उन्हें जीवन के बजाय मृत्यु दे रहा है। सारी मेजें उल्टी से भरी हुई हैं। पादरीगण, बाकी के लोग इसके बारे में बताते हैं, जरा सा मजा करने में कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? अब हम बालक नहीं रहे। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होटो और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा, क्या सबत को मानने वाले इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, विश्राम इसी से मिलेगा। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। यह कब घटित हुआ? 712 वर्ष के बाद, जब पेंटिकॉस के दिन लोगों पर हकलाते हुए होठ आ बैठे और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने अन्य जबानों से बोलना आरंभ किया और पवित्र आत्मा ने उनके जीवन पर अधिकार कर लिया और वे उनके सांसारिक चीजों से दूर हो गए। उसके बाद उन्होंने मसीह के साथ एक विश्राम के अंदर प्रवेश किया। पौलुस ने इब्रानियों के 4 अध्याय में कहा, हमने जो उसके विश्राम में प्रवेश किया है वो सारे सांसारिक कामों से दूर हो गए हैं, जैसे परमेश्वर ने उसकी सृष्टि करने के दिन किया था। उसने अपने विश्राम में प्रवेश किया और हम उसी के जरिए से अपने सांसारिक कामों के बाद उसके साथ प्रवेश करते हैं। वहाँ आपका वास्तविक सच्चा सबत है। सो पौलुस को उठाया गया और वो उस सबत की उस आत्मा में चला गया और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के दिन में पहुंच गया। हमारे पास युद्ध क्यों है? हमारे पास परेशानियां क्यों है? राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में क्यों है? यीशु आया जो जीवन का राजकुमार था और उन्होंने उसे मार दिया। कुछ ही हफ्तों में या यहाँ तक ठीक अभी भी वहाँ 12 सिंगा और सांता क्लॉज और जिंगल बेल्स और सब प्रकार की चीजें घटित हो रही हैं, जो कि पागान मूर्ति पूजक के रीति रिवाज है। ये कैथोलिक कलीसिया का एक भाग है। लोग बड़े बड़े दामों को चुकाते हैं और इस प्रकार के उपहारों की अदला बदली करते हैं जो पागान है। क्रिसमस तो आराधना का दिन है, और वैसे भी मसीह का जन्म दिसंबर के 25वें दिन हुआ भी नहीं था। ये नहीं हो सकता है। यदि आप कभी यहूदिया में रहे हैं तो पहाड़ बर्फ से भरे हुए होते हैं, यहाँ से कहीं ज्यादा। वो अप्रैल में जन्मा था जब सारी प्रकृति बढ़ने लगती है। अब लेकिन ये उनके रीति रिवाज हैं। और क्यों हम इन चीजों को करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय मनुष्य के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। वे कुछ तो ऐसा जो मायने नहीं रखता, लेकिन वे इसमें से बस एक व्यवसाय करने के दिन को बनाते हैं। यह अपमानजनक बात है, यह शर्म की बात है उनके लिए जो इस तरह के काम करते हैं। एक पगान का रीति रिवाज। सांता क्लॉज का यीशु से क्या संबंध था? ईस्टर खरगोश या कोई चिकन या किसी तरह की स्याही या किसी चीज के साथ रंगना या किसी तरह के छोटे से सफेद खरगोश का यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ कुछ भी लेना देना है? क्या आप नहीं देखते हैं कि कैसे व्यवसायिक संसार, यही वो कारण है वे इन पुराने रॉक एंड रोल किताबें और गंदी तस्वीरें और अश्लील चीजों को बेचते हैं और इसी तरह की चीजें। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की प्रकृति ऐसी मूर्खता की चीजों के लिए तरसती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हृदय में कुछ तो गलत है। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ विश्राम में प्रवेश नहीं किया है और इन चीजों से दूर हो गए हैं। जब वे इसके अंदर आते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब वे खत्म हो जाते हैं संसार और संसार की चीजों से। परमेश्वर ने उसे वहाँ पहुँचा दिया। ओह, मैं नहीं सोचता कि वह पौलुस की तरह उठा लिया गया था। अब वहाँ ऊपर तीसरे स्वर्ग में और उन चीजों को देखा तो ठीक है, बहुमूल्य पवित्र आत्मा ने यहाँ कुछ हफ्ते पहले किया, मुझे देखने दिया। दूसरे शब्दों में, मैं मृत्यु से डरता था और पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पर उठा लिया और मुझे दिखाया कि यह क्या था। आपने गवाही को सुना है। उसके बाद जब मैं वापस आया, तब मौत तेरा डंक कहाँ है वहाँ पहुँचा दिया गया, बस इसे देखने के लिए कि पर्दे के उस ओर क्या था। उसने मुझे वापस लाया आपको ये बताने के लिए कि वहाँ उस ओर हम आत्मा और प्रेत नहीं होते हैं, हम नौजवान पुरुष और महिलाएं होते हैं जो कभी नहीं मरते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, बस पर्दे के उस ओर होते हैं। मृत्यु आपका अब कुछ नहीं कर सकती है। उस स्थान पर खींचे चले जाने के बाद अब यूहन्ना को पतमुस के टापू से आत्मा में प्रभु के दिन में पहुँचा दिया गया था। यह मनुष्य का दिन है, मनुष्य लड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु का दिन आएगा जब ये राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन जाएगा। तब वहाँ एक महान सहशताब्दी होगी, प्रभु का दिन, उसके आगमन का दिन, उसका न्याय, यही परमेश्वर का दिन होगा। यह मनुष्य का दिन है, यही वो कारण है कि वे आपको यहाँ वहाँ धिक्कारते रहते हैं और वही करते हैं जो वे आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक समय आएगा, आपको कहते वे अभी आपको पवित्र शोर मचाने वाले पाखंडी और कट्टरपंथी कहते हैं, लेकिन एक समय आएगा देखो कि वे ऐसा नहीं करेंगे। वे चिल्लाएंगे और विलाप करेंगे और आपके पैरों पर गिरेंगे। बाइबल ने कहा बलाकी 4 में, तुम उनके भस्म हो जाने के बाद यहाँ तक वहाँ उनकी राख पर चलोगे, ना ही उनकी कोई जड़ ना ही डाली छूटेगी। ठीक यही बात बाइबल कहती है, धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेंगे। यह बिल्कुल ऐसा ही है, वे ना ही जड़ या डाली को छोड़ेंगे ताकि कुछ भी वापस ना आए और वे समाप्त हो जाएंगे। अब यह एक मनुष्य का दिन है, ये मनुष्य कर रहा है, मनुष्य का काम, मनुष्य की कलीसिया, मनुष्य के विचार, लेकिन प्रभु का दिन आ रहा है। अब वह प्रभु के दिन आत्मा में था तो ठीक है, और पहली बात जो उसने सुनी जब वह प्रभु के दिन आत्मा में था। अब हमारे पास 10वां पद है, आत्मा में प्रभु के दिन पर, और उसने सुना एक आवाज को, एक तुरही का सा शब्द। आइए अब एक दृष्टांत को नहीं छोड़ेंगे, यदि हमें इसे कल लेना पड़े तो हम इसे ले सकते हैं। देखो कोई तो अब घड़ी को देख रहा है कि मुझसे देर न हो जाए, तो ठीक है। अब प्रभु के दिन आत्मा में था। अब याद रखना, पहली बात यह है कि आपको करना क्या है, आत्मा में आ जाएं। यह प्रकाशन हमेशा ही आपके पास कैसे आता है, आत्मा में आ जाएं। आप भला किस तरह से हमेशा पवित्र आत्मा को पाते हैं, आत्मा में आ जाएं, आत्मा में आ जाएं। जब आप एक पापी थे और आप एक नाच को करने जाते थे तो आप उस आत्मा में आते थे। ओह प्रभु, आप अपने हाथों से ताली बजाने लगते हैं और अपने पैरों को थपथपाने लगते हैं और शिंदगी नाच को करते हैं और अपनी टोपी को फर्श पर फेंकते हैं और गोल गोल और गोल गोल घूमने लगते हैं। मूर्ता पूर्वक हरकतों को करते हुए आप इसकी आत्मा में थे। क्या आप एक व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो एक नाच का शौक रखता था, एक नाच को देखने के लिए जाता है, कहता है तो और आप सबका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, मुझे लगता है। ओह, वे कहेंगे तुम खुद को अलग रखने वाले लोगों, यहाँ से निकल जाओ। देखा, गेंद के खेल में जाएं, कोई तो एक बैट से मारता है या ऐसे ही कुछ बैठकर और देखते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही अच्छा है? नहीं, आप एक बेसबॉल के शौकीन नहीं हैं, आप सच में शौकीन नहीं होंगे, आप बेसबॉल की आत्मा में नहीं होते हैं। जब कोई तो एक बैट से मारता है तो आप उठकर और चिल्लाने लगते हैं, वाह, ओह, जीत गए। कोई तो उसके सिर से टोपी को इस तरह से मारकर गिरा देता है, कोई भी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेगा। तब कलीसिया में जब आप आत्मा में आते हैं तो उठकर और चिल्लाने लगते हैं, महिमा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कोई तो मुड़कर कहता है, पवित्र शोर मचाने वाले, ओह भाईवुड, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। यदि हम पवित्र शोर मचाने वाले हैं क्योंकि हम ऐसा करते हैं, तब वे वहाँ पर बाहर अपवित्र शोर मचाने वाले हैं। मैं बल्कि पवित्र शोर मचाने वाला बनूंगा, क्या आप नहीं? एक अपवित्र शोर मचाने वाले होने की बजाय, ओह निश्चित रूप से अपवित्र शोर मचाने वाले। अब वह आत्मा में था, वह आत्मा में आ गया, फिर बातें जगह लेने लगती हैं, और फिर जब वो वहाँ गया तो उसने एक तुरही को सुना। अब एक तुरही हमेशा ही कुछ आगमन की घोषणा करती है। जैसे आप आते हैं, एक राजा आ रहा है, तो वे एक तुरही की आवाज को करेंगे। जब यीशु आता है तो वो एक तुरही को बजाएगा, ये सही है। जब यूसुफ आगे आने वाला होता है तो उन्होंने तुरही को बजाया। और अब कुछ तो आगे आ रहा है, यूहन्ना आत्मा में आ गया और उसने एक तुरही को सुना। उसने एक तुरही सुनी और वह देखने के लिए बोला कि उसके पीछे क्या है। जब उसने तुरही को सुना उसके आत्मा में आने के बाद, हो सकता है वो नाच रहा था, कूद रहा था, यामा टापू पर दौड़ रहा था, उसके पास एक अच्छे समय था, वो आत्मा में था। सो और यह हो सकता है ये अशोभनीय लगता हो, लेकिन मेरा इसका इस तरह से अर्थ नहीं है। देखो, वह कर सकता है, यही है। तो हो सकता है वो ऐसा कर रहा होगा। मेरा विश्वास है कि आत्मा में उसका एक अच्छा समय रहा था, केवल परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब प्रथम स्थान पर आत्मा उन पर उतर आया, जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तो वे पुरुष और महिलाएं मदिरा पी हुए की तरह लड़खड़ाने लगे और ऐसे करने लगे जैसे वे नशे में थे और बुदबुदाने लगे थे। और वे इस तरह से करते ही जा रहे थे जब तक लोगों ने ये नहीं कहा, ये लोग नई मदिरा में धुत हैं। इसी तरह से उन्होंने पहली बार बर्ताव किया, तो उसी तरह से आत्मा फिर से आया। हो सकता है उसने उसी तरह से बर्ताव किया हो। देखा, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, यह तो पुराने समय का धर्म है। जी हाँ, आत्मा में प्रभु के दिन पर अब हम इसे सुनते हैं। अब क्या, अब वो क्या कर रहा था? अब आत्मा में उस टापू से प्रभु के दिन पर पहुंचा दिया गया था, और जैसे ही वह प्रभु के दिन में आ गया, उसने एक तुरही को सुना। यह क्या है? यह कोई तो आ रहा है, कोई तो एक महान जन आ रहा है, तुरही की आवाज, कोई तो आ रहा है। उसने देखा, हालेलुया, तुरही कहते हुए, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी हूँ। ना ही किसी दूसरे जन या तीसरे जन की घोषणा करता है, लेकिन केवल उसी एक जन की। मैं दोनों हूँ, अल्फा और ओमेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ भी दिखाऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। सारे प्रकाशन में सबसे महान दैविकता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्च दैविकता है। आप उस पहले आधार तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप इसे विश्वास नहीं करते, चले जाते हैं। यही पत्रस ने कहा, पश्चाताप करो और फिर दैविकता को देखो, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और तब आप आत्मा में जाने के लिए तैयार हैं। पहली बात जो आपको जानना है वो है मसीह की दैविकता। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ए से लेकर जेड हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं आदि में था और अंत में रहूँगा, मैं वो हूँ जो था, जो है और आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। इस पर सोचें, यही है वो जो तुरही ने कहा, ध्यान रखना यूहन्ना, तुमने आत्मा में प्रवेश किया है, कुछ तो तुम्हारे सामने प्रकट होने जा रहा है। यह क्या है? एक तुरही की आवाज। पहली चीज, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, सारे प्रकाशनों में का वो पहला प्रकाशन। ओह पापी, झुक जा, अभी पश्चाताप कर, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यही वो पहली बात है जिसे उसने उसे बताया। वह कौन था? यह कौन आ रहा है? क्या यह राजा यीशु है, राजा परमेश्वर, राजा पवित्र आत्मा? उसने कहा, मैं ये सब हूँ, मैं ए से लेकर जेड तक हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अमरहार हूँ, वो एक अनंत। कुछ देर बाद हम उसे देखेंगे उसके सात प्रकार के व्यक्तित्व में, तब देखेंगे कि वो क्या है। मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूँ, मैं उससे पहले था, उस एक पहले से और उसके बाद, अब और कोई अंतिम नहीं है, मैं तब भी वहाँ रहूँगा। दूसरे शब्दों में, पहला और अंतिम। और तुझे क्या दिखाई देता है? एक किताब में लिख और भेज सात कलीसियाओं के लिए जो एशिया में है, इफिसियस के पास, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सर्दिस, फिलदेल्फिया और लौदिकिया के लिए। तो ठीक है, सारे प्रकाशन में से जो पहला है वो यीशु मसीह की सर्वोच्च दैविकता है। आपको जानना अवश्य है कि वो कौन है। जब आप आवाज को सुनते हैं तो ठीक है, वही आवाज जो सियोन पर सुनाई दी थी, वही आवाज जो रूपांतर के पर्वत पर सुनाई दी, वही एक, वो एक जो मनुष्य के पुत्र के समान है। अब इस अगले पद में देखते हैं तो ठीक है, और मैं मुड़ा। अब 12वां अध्याय, हम साथ ही इन कलीसियाओं को बस एक मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इस सारे सप्ताह में इन कलीसियाओं पर बताएंगे। देखो, इसलिए हम उस पर से होकर जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा, ये मैं तुम्हें इस संदेश को भेजने के लिए निर्देशित करने जा रहा हूँ, जिसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन है। मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं वो एक सर्वोत्तम हूँ, मैं वो एक सर्वशक्तिमान हूँ, और मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हें सात कलीसिया के लिए एक संदेश को देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू इसे लिखे, इसे तैयार करे। देखा, और सात कलीसिया जो एशिया में है। अब वहाँ वे कलीसियाएं थी, तब उनमें प्रकृति थी जिसने आने वाले इन कलीसिया युगों का प्रतिनिधित्व किया। अब और मैं उस आवाज को देखने के लिए मुड़ा जिसने मुझसे बात की, और मुड़कर मैंने सात सुनहरे धूपदान देखे। सात सुनहरे धूपदान, अब यह किंग जेम्स का संस्करण है जो आपके पास हो सकता है, या तो एक स्कोफील्ड या दूसरी एक थॉमसन चेन के, या उनमें से कोई तो बाइबल है जो कि सही शब्द नहीं है। यह धूपदान नहीं कहता है, यह मोम धारक कहता है, धूप धारक। मैं सोचता हूँ जो सही है मूल अनुवाद में इस सही शब्द को बताता है। देखो, दूसरे शब्दों में ये सात सुनहरे धूपदान सात कलीसियाएं थी। कुछ ही देर बाद वो कहता है, वो या 20वें पद में कहता है, सात धूपदान जिसे आपने देखा सात कलीसियाएं हैं। सो आप देखते हैं, यदि यह एक मोम था तो जल्द ही भस्म हो जाएगी और जल जाएगी, बस थोड़े ही समय में भस्म हो जाएगी। लेकिन यह मोम नहीं है, यह तो एक धूप धारक है, यह इसे एक धूप धारक की नाई देता है। मैं मुड़ा और उन धूपदानों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखे एक पुरुष को देखा। अब देखो, मोम जल्द ही जल जाती है, यह खत्म हो जाती है, ये इससे और अधिक नहीं जलेगी, कुछ ही घंटों में यह जल जाएगी। लेकिन एक धूपदान, इस तरह का एक धूपदान, यहाँ आइए, यहाँ एक वचन में से लेते हैं, आइए जकरिया 4:1 को ले, तो हो सकता है जकरिया से हम उसी बात को देख सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। जकरिया 4:1, और मैं विश्वास करता हूँ कि तब शायद इसमें एक साथ जोड़ सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। मैं सपन्या की किताब में जकरिया को नहीं पा सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो ठीक है, मेरी पुरानी बाइबल लगभग फट गई है। जकरिया 4:1, अब ध्यान से सुने, आपको यहाँ एक सुंदर तस्वीर मिलती है। और वो दूत भविष्यवक्ता, अब मसीह से 519 वर्ष पहले, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। अब भविष्यवक्ता एक दर्शन में है और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है। अब यह एक ही शब्द है जिसे धूपदान में बदला है, जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, वह दीपक था, और उस पर उसके सात दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए सात सात नलियां हैं। देखो, वही कलीसिया काल ऊपर आ रहे हैं, समझे? और दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं। अब किस तरह का, क्या वे बाइबल के समय में उन दीवट को जलाते थे? क्या कोई जानता है? तेल, किस तरह का तेल? जैतून का तेल। दो जैतून के पेड़, यह क्या है? नया और पुराना नियम, यह दो इसके पास खड़े हुए हैं, एक उस कटोरी की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, वह यरूशलेम को लौटाएगा। अब धूपदान क्या है? यह एक धूप धारक है, और ध्यान दे कि कितना सुंदर है। यहाँ जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि यहाँ मनुष्य का पुत्र सात सुनहरे धूपदान के बीच में खड़ा है, जिसका अर्थ आने वाले सात कलीसिया काल है। और हर एक नली या धूपदान मुख्य बड़े तेल के धूप पात्र के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस तेल में थोड़ा कुछ तो विचित्र आकार का दीवट बाहर की ओर आता है, जिसमें एक बाती के साथ रखा हुआ होता है, और बाती तेल के अंदर लटकी हुई होती है। और जब तक वे धूपधारक के ऊपर तेल को उसमें डाल देते जो मुख्य बड़ी नली में, और बड़े भाग को भर देते, और तेल इस तरह से नलियों में निकलता रहता, और दीवट के साथ वो बाती जो नीचे की ओर लटकती है, यह इस नली में दिन रात लगातार जलता रहता। आपको इसे कभी भी जलाना नहीं पड़ता है, यह कभी नहीं बुझता है। वे केवल मुख्य नली में तेल डालते रहते, और ये धूपदान जो इस तरह से निकला हुआ रहता है, उसके ऊपर दीवटें रखी होती थी। दीवट से निकली हुई बाती यहाँ नीचे की ओर आती है, यहाँ से उसको जीवन मिलता है। ओह, दीवट से क्या अलग बात है, कितनी अलग। यह एक धूपदान है, और यह तेल को खींचता है। अब ये धूपदान पुराने नियम में जो इन धूपदानों पर आग होती थी, जब वे एक दीवट को जलाते तो वे अगले दीवट को उसी आग से नहीं जला सकते थे जो उनके हाथ में होती थी। वे एक दीवट को जलाते, फिर उसे लेकर और दूसरा दीवट जलाते, फिर इसे रख देते, और इस दीवट को जलाते, और फिर उठाकर इस दीवट को उसी आग से जलाते जिसे उन्होंने शुरुआत में आरंभ किया था। ओह, मैं आशा करता हूँ कि यह आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसी अग्नि पवित्र आत्मा ने उन सभी कलीसिया को जलाया, ठीक उन युगों में से होते हुए यहाँ तक। क्या संत यूहन्ना 15 में यीशु ने नहीं कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो? अब वह मुख्य दाखलता है, हम डालिया है। अब दाखलता फल नहीं लाती है कि आप एक चकोतरे के पेड़ को ले सकते हैं, जैसा कि एक नारंगी उसकी एक शाखा को निकाल सकते हैं, तो मैं कहूँगा, और आप एक अंगूर के पेड़ को ले सकते हैं, और एक नारंगी के पेड़ में जरा से स्थान को चीरे और उस अंगूर की शाखा को उसमें डाल दें, यह बढ़ने लगेगा। आप यहाँ पर जाकर और एक नींबू की शाखा को लें और इसे एक नारंगी के पेड़ में लगा दें, यह बढ़ने लगेगा। या एक अनार को ले और उसे ले, या कोई भी खट्टे फल, संतरा या मौसम्बी, उन खट्टे फलों में से किसी को भी, और उन्हें इस पेड़ में लगा दें, और यह उस नारंगी के पेड़ में उसका जीवन फलने फूलने लगेगा, लेकिन यह नारंगी को उत्पन्न नहीं करेगा, यह अंगूरों को ही उत्पन्न करेगा, यह संतरों को ही उत्पन्न करेगा, यह नींबू को ही उत्पन्न करेगा, लेकिन यह मूल दाखलता के जीवन से फलने फूलने लगता है। लेकिन यदि इस दाखलता पर कभी भी एक और दाख, एक और दूसरी शाखा निकलती है, तो यह उसी पेड़ के जीवन को लाती है जो इसमें है, यह एक नारंगी को उत्पन्न करेगी, क्योंकि आरंभ में इसकी जड़ में एक नारंगी पेड़ का जीवन है, लेकिन वे दूसरी शाखाएं इससे अलग हो सकती हैं, क्योंकि इसमें खट्टे फल की प्रकृति होती है, लेकिन यह मूल के फल को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह मूल पेड़ के नहीं है। इसी तरह से कलीसिया है, उन्होंने दाखलता को अलग करके और प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और इत्यादि इसमें कलम किया या डाला गया है। यह बैप्टिस्ट फल उत्पन्न करता है, प्रेस्बिटेरियन फल को, मेथोडिस्ट फल को, लेकिन यदि यह कभी पेड़ कभी एक और दाखलता को लाता है, तो यह उसी तरह की दाखलता होगी जैसे ये पेंटिकॉस्ट के दिन लाई गई, वो मूल दाखलता। ये अन्य जुबान में बोलेंगे और इसमें सामर्थ और पुनरुत्थित मसीह के चिन्ह होंगे। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन से फल फूल रहे हैं। यह जिसमें लगाया गया है, असल में यह इसमें लगाया नहीं गया है, यह तो इसमें जन्मा है। प्रभु की स्तुति हो। ओह प्रभु, तब ठीक उस एक के बारे में नहीं सोचा। देखो, इन अन्य डालियों को इसमें कलम किया गया है, वे उन्हें पेड़ में कलम करते और लगाते हैं, इसलिए वे अपने प्रकार का फल उत्पन्न करते हैं। वे इसे नहीं ले सकते, वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं जाना। लेकिन यदि वे उसी जीवन में जन्म लेते हैं जो उस पेड़ से निकलता है, यही केवल वो चीज है जिसे वे उत्पन्न कर सकते हैं जो उस मूल डंठल का जीवन है। ये जीवन एक बहुत बड़े कटोरे के अंदर जुड़े हुए होते हैं, एक बहुत बड़ा धारक और 9 अलग अलग मतलब 7 अलग अलग धूप धारक इसमें से निकलते हैं, और जब उन्होंने किया तो उसमें से प्रत्येक उजाला इसके जीवन को मुख्य संसाधन से खींचते थे, और इसका उजाला इसलिए था क्योंकि इसकी बत्ती इस मुख्य नली में डूबी हुई थी। ओह, उन 7 तारों में से उस एक की क्या ही सुंदर तस्वीर है। इसने इसका प्रतिनिधित्व किया उसके जीवन के साथ, यहाँ पवित्र आत्मा के साथ जल रहा है, और ये विश्वास के द्वारा वो पवित्र आत्मा के साथ यहाँ जल रहा है, और उसका जीवन वो एक दीवट है, मतलब वो दीवट नहीं लेकिन एक बाती है जो पवित्र आत्मा में मसीह में डूबा हुआ है, और उस बाती के जरिए से वह परमेश्वर के जीवन को उसके कलीसिया के लिए उजियाले को भेजता है। ओह, उस सच्चे विश्वासी की क्या ही तस्वीर है, वह किस प्रकार का जीवन दे रहा है। यह उसी प्रकार का उजियाला था जब पहले दीवट को जलाया गया था। अब पहला कलीसिया युग आरंभ हुआ तो यह इफिसियस था। पौलुस उस कलीसिया का दूत था, उन तारों में से एक। वहाँ 7 तारे हैं जिसका अर्थ है 7 दूत, 7 संदेशवाहक। इस सप्ताह में मैं वचन और इतिहास को ले सकता हूँ और आपको साबित कर सकता हूँ उनमें से हरेक उस प्रत्येक दूत में सच्चा है, और हरेक दूत के पास वही उजियाला था। यह सही बात है, और फिर ठीक इन युगों के बीच में उस एक महान को आना है। ध्यान दें, अब वे तेल के इस मुख्य नली से खींचते हैं वो उजियाला, वो जीवन मसीह में डूबा हुआ है। आप मरे हुए हैं और आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है, परमेश्वर के जरिए से या मसीह के जरिए से परमेश्वर में छिपा हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद है। वहाँ ऐसा कोई जरिया है ही नहीं कि आपको कभी इससे दूर रखा जाए। आप इसे कैसे कर सकते हैं? कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपके जीवन का अंतिम छोर पवित्र आत्मा के साथ जल रहा है, ओह जलते हुए उजाले को दे रहा है। आपके जीवन का दूसरा छोर कहाँ डूबा है? मसीह में। आप मर चुके हैं और मसीह पवित्र आत्मा में छुपे हुए हैं, इसे वहाँ रोक रहा है जिससे कि आप चैतन आपको छू नहीं सकता है। आमीन। वह सीटी बजाकर शोर मचा सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपको नहीं छू सकती है। ए मौत, तेरा डंक कहाँ है? तेरी विजय कहाँ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से विजय को देता है। इस पद के अंत को आइए इसे पढ़ें। और मुड़ा, मैंने 7 सुनहरे धूपदान देखे, और 7 सुनहरे धूपदान के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। और क्या आपने ध्यान दिया, तारे, धूपदान, दीवट, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? ये समय का पूरा होना है जिसमें हम रह रहे हैं। ये रात का समय है। दीवटे और प्रकाश और तारों का मतलब रात है। और एक तारा क्या करता है? ये सूर्य के उजाले को प्रतिबिंब करता है जब तक सूरज नहीं लौटता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर का एक सच्चा सेवक कोई लालटेन, कुछ माचिस की तीली, कुछ छिलके को जलाकर प्रतिबिंब नहीं करता है। वो कलीसिया के लिए मसीह की सुनहरी किरणों को प्रतिबिंब करता है कि वो एक सा है, और वह जीवित है, और वो मुझ पर चमक रहा है। आमीन। यही वो उजियाला है जिसे वो प्रतिबिंब करता है। वो तारा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करता है। देखो तो हम परमेश्वर के पुत्र के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने किए, उजाले को देते हुए। किस तरह का उजियाला? उन लोगों के लिए सुसमाचार का उजियाला। अब हम उसे थोड़ा आगे देखते हैं, जैसे हम इस 13वे पद के बाकी के भाग को लेते हैं। और उन दीवटों के बीच में यही तो मध्यस्थ है, मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था। अब यहाँ अधिक प्रमाण है कि यह सिद्धांत प्रभु का दिन होने के बारे में सही है। क्या आपने उसे ध्यान दिया? क्या इस समय के दौरान एक याजक नहीं था, ना ही वो एक राजा था, वह एक न्यायी था। ध्यान दें, एक याजक, एक महायाजक, जब वे भवन में जाते या सेवकाई के काम को करने के लिए जाते जिससे कि सेवा के काम को करे, वो खुद को कमर पर से चारों ओर बांध लेते। कमर के चारों ओर उसके पटुका बांधने का मतलब होता है कि वे सेवा के काम को कर रहा था, वो कभी भी इसे अपने कंधे पर नहीं बांधता है। लेकिन यहाँ पर वह बाहर आता है, ऊपर की ओर बंधे हुए उस पटुके के साथ होता है, अपने कंधे पर एक कमरबंद को कसे हुए, लगभग छाती पर पटुका बांधे हुए, स्तन पर सुनहरे पटुके के साथ ऊपर की ओर पटुका कसा हुआ। यह क्या है? एक वकील, एक न्यायी, वो न्यायी अपने कंधे पर उसके पटुके के साथ था, यहाँ पर पटुका कसा हुआ, ना ही एक याजक की न्यायी नीचे की ओर कसा हुआ। देखो, यह दिखाता है कि वह अपने याजक के पद में नहीं था। यूहन्ना वहाँ से होते हुए प्रभु के दिन पर चला गया, उसे न्याय के रूप में आते हुए देखा। क्या विश्वास करते हैं कि वह एक न्यायी है? आइए संत यूहन्ना 5:22 को पढ़ें। अब जल्दी से हम देखेंगे कि वह एक न्यायी है या नहीं। संत यूहन्ना 5:22, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। क्या ये सही है? वह न्यायी है, सर्वोच्च न्यायी है, और यूहन्ना दिखाता है कि वह उसकी भविष्यवाणी के दिन में नहीं था, एक भविष्यवक्ता की नाई, न ही वो उसके राजपद के दिनों के अंदर एकदम से चला गया था, लेकिन वह प्रभु के दिन में था, एक न्याय के रूप में। अब कितने लोग जानते हैं कि याजक के पास उसका पटुका होता है, उसके कमर के चारों ओर उसके बांधने का मतलब है कि वह सेवा में था। जो कोई भी नियमों को पढ़ता है, वह पुराने नियम को जानता है, वो इसे जानता है। जब एक याजक के चारों ओर यहाँ पटुका कसा हुआ होता है, तो वह सेवा में होता है, वह एक दास होता है, लेकिन पटुका यहाँ ऊपर कसा हुआ है, इसलिए वो एक न्यायी था। आइए थोड़ा आगे पढ़ें। एक सुनहरा पटुका था लगभग छाती पर, यह सही है, यहाँ पर ऊपर चारों ओर वह न्यायी था। अब हम उस मनुष्य की 7 प्रकार की महिमा को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओ प्रभु, इससे लगता है कि मैं जोर से चिल्लाऊं, इससे पहले कि मैं इस बात तक पहुंचूं, ध्यान दें, ओह यह क्या ही अद्भुत बात है। अब सुनना, और उसका सिर, अब ध्यान देना, वो 7 चीजें हैं यहाँ पर वो उल्लेख करता है, उसका सिर, उसके बाल, उसकी आँखें, उसके पैर, उसकी आवाज, 7 चीजें जिसे उसने यहाँ बताया है, जो यीशु मसीह की 7 प्रकार की महिमा है। मुझे इसे पढ़ने दो। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। क्या ही एक दर्शन है! उसने यहाँ पर क्या देखा? महिमावंत परमेश्वर का पुत्र और एक चिन्ह। अब आइए आइए अब तैयार हो जाएं। ओ प्रभु, मैंने सोचा कि ये 9 थे, ये केवल 8 हैं। मैंने अभी तक आरंभ नहीं किया है, तो ठीक है, ये अच्छा है। अब मुझे खेद है कि ये भाई लोग खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा देखकर मुझे परेशानी होती है। आप देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके पैर दर्द कर रहे होंगे। यदि मेरे पास अब भी किसी तरह का तरीका हो सकता था भाइयों, तो मैं करता था, मैं निश्चय ही इसे करता। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि इस तरह की तकलीफ को ले लें और कुछ देर तक खड़े रहें, और परमेश्वर आपको बहुतायत से प्रतिफल देगा, मेरी प्रार्थना है। अब ध्यान दें, पहली चीज, अब हम ध्यान देते हैं, उसका सिर और उसके बाल ऊन की तरह सफेद थे, उसका सिर और उसके बाल ऊन की तरह सफेद थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह बुजुर्ग था जिसने ऐसा किया, इसका कारण यह नहीं था, इसे करने के लिए बुजुर्ग नहीं होना था, वह था, यह तो उसके अनुभव और योग्यता और उसकी बुद्धिमत्ता के कारण से था, क्योंकि वो अनंत है और अनंतता की आयु नहीं हो सकती। क्या आप समझ रहे हैं? आइए पहले जाएंगे और हम इसे उसका यहाँ इस तरह से चित्रित करेंगे, और हम देखेंगे कि यह क्या है। अब आइए दानियल 7:9 की ओर जाएं। बस एक मिनट के लिए आप दानियल में उसी तस्वीर को देखें जहाँ पर वह आता है, यहाँ प्राचीन समय में, और अधिकांश लोग जो बाइबल के विद्वान हैं सही सही जानते हैं कि ठीक अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं। दानियल 7:9 पद, मैं 8वें पद से आरंभ करूंगा। और मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा? उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, क्या आप जो पीछे हैं मुझे सुन सकते हैं? कहें आमीन। यदि आप सुन सकते हैं तो मैं वहाँ पीछे अपनी पत्नी से पूछता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो माइक है या यहाँ अधिक काम कर रहा है, क्या ऐसा है? अब मुझे बहुत ही अधिक चिल्लाना पड़ रहा है, मुझे लगता है मैं सोचता हूँ इस माइक में। तो ठीक है, अब दानियल 7:9, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उन दिनों के प्राचीन उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे और उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। सफेद बाल सभी, हर कोई जानता है कि यही प्राचीन दिनों में बुजुर्ग न्यायी होते थे, जैसे इंग्लिश न्यायी लोग बर्फ के जैसे सफेद विग नकली बाल को पहनते थे। कितने लोगों को याद है पुराने प्राचीन न्यायी एक सफेद विग नकली बाल को पहनते थे, क्योंकि वे, और यहाँ पर वो फिर से दिखा रहा है कि योना प्रभु के दिन में है, उसने उसे न्याय के रूप में देखा। आमीन। ना ही याजक के रूप में, राजा के रूप में नहीं, नबी के रूप में नहीं, लेकिन न्याय के रूप में। वो पिता, ये संत योना 5:22 है, उसे सारे न्याय को सौंप दिया और वो अब न्यायी है, राष्ट्रों का न्याय करने के लिए आया है। उस दिन के लिए जब आप उसे इस तरह से देखते हैं, उसके बाल बर्फ की नाई सफेद थे। दानियल ने उसे प्राचीन दिनों में आते हुए देखा। इन दोनों को एक साथ जोड़कर उसे देखें। तो ठीक है, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। मैं देखता रहा उस समय, उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। नहीं, मैं गलत जगह पर हूँ क्या? मैं नहीं हूँ। दानियल 7:9, हाँ यहाँ हम हैं। और उसके पहिए उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर उस धधकती हुई आग में भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया। यही है जो सारी अन्य जातियों की सामर्थ और राज्य गिर जाएंगे, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों, हमने उसे कैसे देखा आज सुबह आते हुए, तीसरे पद में वो आकाश के बादलों में आ रहा है। मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्राचीन काल के दिनों में आते हैं, जिनके बाल ऊन के समान सफेद थे और योहन्ना मुड़ा और उसने देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान 7 सुनहरे धूपदान के बीच में बर्फ के से सफेद बालों के साथ खड़ा है। न्यायी, न ही कब्र के चारों ओर पटुका बांधे हुए, लेकिन छाती के चारों ओर पटुका बांधे यहाँ ऊपर की ओर एक न्यायी, उसके कंधे पर न्यायी के पटुके के साथ एक सुनहरा शुद्ध पवित्र परिशुद्ध कमरबंद के साथ खड़ा था, जो उसकी धार्मिकता को पकड़े हुए थी। उसका आवरण वह वहाँ से लेकर पैरों तक पूरी तरह से ढका हुआ था। उस व्यक्ति और महिमा के 7 प्रकार के प्रकटीकरण को देखें। अब मैं सोचता हूँ 14वां पद, उसके बाल, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। सिर, बाल, आंखें आग की लपटों की तरह थी। इसे सोचें, वे आंखें जो कभी मानवीय आंसुओं से धुंधली हो गई थी, अब आग की ज्वाला में बदल गई हैं। रोष में वो वहाँ पर न्यायाधीश की नाई रोष में खड़ा हुआ है। तुमने उसे क्यों अस्वीकार किया? ओ पापियों, इसे सोचें, इसके बारे में सोचो। गुनगुने कलीसिया के सदस्य, इस पर सोचें कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, इसे सोचे कैथोलिक, आपकी कुआरी मरियम को भी पेंटिकॉस्ट के लिए जाना पड़ा था और पवित्र आत्मा को पाना था और उसने डगमगाते हुए और एक मजीरा पी हुए महिला की तरह बर्ताव किया था। उसी मसीह की माँ को उसे पवित्र आत्मा को पाना था इससे पहले कि उसे स्वर्ग में जाने की अनुमति मिले। आप जो महिलाएं हैं उस पवित्र आत्मा से कुछ कम पाए बिना भला वहाँ कैसे जा सकती हैं? इसके बारे में सोचें। पुरुषों, आप में से हर एक जन उसके बाल और उसकी आँखें जो एक बार मानवीय आंसुओं से धुंधली हो गई, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उन आँखों की ओर जरा ध्यान दें। जब वह धरती पर था तब उसकी आँखें एक मनुष्य की तरह आंसुओं से धुंधली हो गई थी क्योंकि वह लाजरस की कब्र पर रोया था। सही है, सहानुभूति से भरी हुई उसकी मानव जाति, वह वस्त्र पहने हुए था। वह परमेश्वर था जो मानव जाति के वस्त्र पहने हुए था ताकि पाप को दूर किया जा सके। लेकिन फिर भी उस मानव जाति के पीछे उसके पास उसके पीछे कुछ तो ऐसा था जो ठीक एक मनुष्य के हृदय के अंदर झांक सकता है और उसके बारे में सब कुछ समझ सकता है। क्यों? उसके पीछे कुछ तो है। फिर भी वह मरणहार देह में उस वस्त्र को पहने हुए था, लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि ये कौन है। यदि तुम विश्वास नहीं करते, उसने कहा कि मैं वो हूँ, तुम अपने पापों में मर जाओगे। यह सही है। यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन यदि मैं अपने पिता के कामों को करता हूँ तो कामों पर विश्वास करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। ओह, उसने किस तरह से उन्हें संदेश को पहुँचाने की कोशिश की। वो प्रकाशन जो सीधे एक मनुष्य के हृदय को देख सकता है, उसके बारे में सब जान सकता है। मैं ऐसा कैसे सोचता हूँ? वे आँखें जिसे कभी पहाड़ों के ऊपर छेदा गया था, उस पीड़ा में जाते हुए उस चेहरे की ओर देखा और जो एक मनुष्य की तरह रो सकता था लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा को ले सकता था, वहाँ उस मनुष्य के दृष्टि के पीछे और सारी बातों को देखती है। वो बातें जो थी, वे बातें जो थी, वो बातें जो आने वाली है, पहले से ही आरंभ से लेकर अंत को बता देना, यही वो कारण है कि परमेश्वर उन मनुष्य की आंखों के पीछे था। परमेश्वर को आपके जीवन में आने दें और आपका नियंत्रण लेने दें और वो आपको आने वाली बातों को दिखाएगा, क्योंकि ये अब आप नहीं होते हैं, यह तो आपके जीवन में वहाँ पीछे पवित्र आत्मा होता है जो उनकी मरणहार आंखों में से होते हुए उन बातों को जान लेता है। ओ परमेश्वर की महिमा, मैं अपनी आत्मा को सारे देह में उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान पुरुष दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। कभी कभी वो आपको सुला देता है जिससे वह आपके जरिए से देख सके, लेकिन वह निश्चय ही बहुत बार आपको दिखाएगा। तुम्हारे जवान पुरुष दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मेरे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, न ही मेरे डीकनों और पास्टरों पर और मेरे जिस पर भी हो सारी देह पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, लेकिन यह इन कलीसिया युगों में आ रहा है। ओह, वहाँ वो था, वे आँखें, और याद रखना एक दिन वे आँखें जो आंसू से धुंधली हो गई थी, वे आँखें न्याय पर खड़ी होंगी। अब वे भयंकर आग की ज्वाला की तरह है और सारी धरती पर से होते हुए इधर और उधर घूम रही है और वहाँ ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है सिवाय इसके जिसे वो जानता है। ओह प्रभु, इसे रिकॉर्ड या दर्ज किया गया है। सारे धरती पर से होते हुए इधर और उधर घूम रही है, हर चाल को देख रहा है, हर एक विचार को जांच रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे जानते हुए हृदय के इरादे, आपका क्या करने का इरादा है, वह इसके बारे में सब जानता है। वह जानता है कि आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं। वह जानता है कि उसकी सेवा करने का आपका इरादा सही है या नहीं। वह इसके बारे में सब जानता है। और ये क्या होगा जब आप उस दिन पर खड़े होंगे जब हर एक पाप को उसके सामने उघाड़ा जाएगा और वो वहाँ सफेद सिंहासन पर खड़ा होता है। परमेश्वर मुझे उस स्थान से छुटकारा दे, मैं उसे नहीं देखना चाहता जब एक क्रोधित परमेश्वर उसकी आंखों से चमकती आग के साथ वहाँ चलकर जाता है। धार्मिकता के साथ इस तरह से उसके सिर पर सफेद विग होती है और उसकी आंखें अग्नि के साथ चमकती है जो आपके हृदय के हर एक विचार को जानती है और वह सब कुछ जो आप हमेशा करने का इरादा करना चाहते हैं। मुझे युगों की चट्टान में छुपा ले। वे पहले समय के लोग हमेशा ही गाते थे, जब ये संसार सारा आग पर हो, मेरे पास खड़े रहना, मेरे पास खड़े रहना, और तेरी गोद मेरा सिराना हो, मुझे युगों की चट्टान में छिपा लेना। परमेश्वर, मैं आपके न्याय को नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप, मैं आपकी दया को चाहता हूँ। प्रभु, मुझे आपकी दया दीजिए, ना ही तब आपका न्याय, मुझे बस आपकी दया दीजिए, ना ही आपके कानून, ना कोई, बस मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यही सब मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई गिनती नहीं है, केवल पूरी तरह से आपके क्रूस पे चिपका हूँ। प्रभु यही सब है जो मैं जानता हूँ, वो एक जो मेरे स्थान को लेने के लिए आता है उस व्यक्ति में के अब उसके सात प्रकार के व्यक्तित्व को देखे और आप देखेंगे कि उसने क्या किया। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पालेके से उज्जवल थे और उसकी आंखें, आइए देखें, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पालेके से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। अब देखो, हमने अभी देखा कि वह कहां तक ढका हुआ है, आप जानते हैं, अब देखना उसका सिर, उसकी आंखें, अब वो नीचे की ओर जाता है, उसके पैर जो पीतल के समान थे, उस छवि की तुलना करके देखें जिसे योना ने यीशु के लिए देखा और दानियल के विश्व साम्राज्य को देखें, सोने का सिर और इत्यादि। इस पर देखो कि यहाँ पर क्या था, वहाँ खड़ा था पीतल। पीतल किस बारे में बताता है? पीतल न्याय के लिए बताता है, दैविक न्याय। यह दर्शाता है कि उसका सारा उद्देश्य धरती पर परमेश्वर की न्याय आना है, देहधारी होने के लिए, और वह हमारे लिए मरा और परमेश्वर के न्याय को लिया, दैविक न्याय, और एक राज्य को प्राप्त किया जो पीतल है और वो ठोस है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। पीतल की तुलना में कुछ भी ठोस नहीं होता है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया जो इसे नरम करे। न्याय पीतल उस बीत चुके दैविक न्याय को बताता है। जंगल में पीतल के सर्प की ओर देखें, उस पीतल का सर्प ने क्या दर्शाया? सर्प ने पाप को प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ये पीतल का होने की वजह से न्याय पहले से ही पाप पर आ चुका था। अब एलिया के दिनों पर भी ध्यान दें, जब उन्होंने एलिया को नबी के नाई अस्वीकार कर दिया था, वह छोटा सा धागा, वो प्राचीन कलीसिया काल। इन दिनों में से एक दिन मैं आपके सामने इसे लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसराइल के पास भी सात कलीसिया काल थे और ठीक इसी के साथ प्रतिछाया थी, और उनके कलीसिया काल में एलिया के दिनों में उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और 3 वर्ष और 6 महीने तक कोई बारिश नहीं हुई थी और प्राचीन काल के भविष्यवक्ता ने कहा कि आकाश पीतल की तरह दिखा। परमेश्वर को अस्वीकार करने और इजेबेल को सुनने के कारण राष्ट्र पर दैविक न्याय पड़ा था। पीतल वेदी पर दैविक न्याय को भी प्रतिनिधित्व करता है जहाँ बलिदान को घात किया गया था, पीतल के समान वेदी मारा गया, वही बुनियाद वो पीतल था, वो न्याय। उसने परमेश्वर के जल जलाट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदा और हमारे न्याय को अपने ऊपर ले लिया। प्रकाशित वाक्य 19:15 पर जाएंगे, अब एक मिनट आइए देखें कि उसने क्या किया। प्रकाशित वाक्य 19:15, आइए इसे पढ़ते हैं, एक मिनट यदि ये मिल सकता है, हाँ आइए आरंभ करते हैं, आइए देखते हैं 12वें पद के बारे में। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब याद रखें, उसका नाम परमेश्वर का वचन नहीं था, उसका नाम उसे बताया गया था, देखा, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह ये क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदेगा। उसने क्या किया? परमेश्वर का क्रोध हम पर पापी होने के लिए था। क्या यह सही है? कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। हम सभी पाप में जन्मे, अधर्म में डाले गए, झूठ बोलते हुए संसार में आते हैं, और उसने क्या किया? वह धरती पर आया, हालेलुया, और मदिरा के कुंड में दाग को रौंदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सारा क्रोध उस पर उंधेला गया। तू योग्य है हे परमेश्वर के मेमने, क्योंकि तू घात किया गया था संसार के पापों को अपने ऊपर लेते हुए, और उसने हमारे पाप को लाद दिया जिससे परमेश्वर ने उस पर अपने क्रोध की प्रचंडता को डाला, और वह हमारे अपराधों के कारण घायल हो गया था, हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी थी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। उस मनुष्य की तरह कोई नहीं मरा, वह तब तक पीड़ा में रहा जब तक उसके शरीर में से लहू और पानी अलग नहीं हो गया। उसकी मृत्यु से पहले उसकी बोह में से लहू की बूंद बाहर निकलने लगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। किसी दिन न्याय के ये पीतल के पैर महिमा जब वो न्याय के रूप में आता है तो वह मसीह विरोधी और उसके सारे शत्रुओं को रौंदेगा। हालेलुया। वह अपने हाथ में लोहे की एक छड़ को लेकर धरती पर से चलेगा। आमीन। ओ पश्चाताप करो पापी मित्रों, जब आपको पश्चाताप करने का मौका मिला है इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि यह तो बस एक छोटी सी कहानी होगी जो नहीं हुई होगी। ऐसा होगा, यह बस मेरे लिए नहीं हो सकता है, यह आपके लिए होगा। पीतल के पैर अपने शत्रुओं को रौंदेगा क्योंकि उसने हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए परमेश्वर की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और फिर हम दोषी तुच्छ अभागे कीड़े की नाई जो कि हम हैं, अपनी छोटी नाक को बंद करके और किसी तरह की नास्तिक किताब को पढ़ते हैं और सोचने का प्रयास करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और न्याय नहीं आ सकता है। वह उन पीतल के पैरों से अपने शत्रुओं को कुचल डालेगा। वह मसीह विरोधी को रौंदेगा। वह उन विश्वास की त्यागी कलीसिया को उठाकर और उन्हें उस ओर अनंतता के अंदर फेंक देगा, कहीं तो उस भस्म करने वाली आग में जहां वह भस्म हो जाएगी और वहां पर नष्ट हो जाएगी और वह धरती पर राज्य करेगा। वो और उसकी कलीसिया हमेशा के लिए महिमा। सिर उनकी नाई सफेद, धार्मिकता अनुभव, उत्तम बोली, योग्य, ज्ञानी, बुजुर्ग, श्वेत, ज्ञान की बात को करता है, प्राचीन, वो जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह ज्ञान का झरना है, वह अनुभव का झरना है, वह हर एक भली चीज का झरना है, इसलिए वह मनुष्य के पुत्र की नाई इसका प्रतिनिधित्व करता है जो वस्त्र पहने हुए इस सफेद लटकते बालों के साथ होता है। दानियल ने उसे कई सौ वर्ष 700 वर्ष पहले देखा और कहा वह प्राचीन दिनों में था और वो एक मनुष्य के पुत्र की नाई सामर्थ में आया और इस प्राचीन दिनों के साथ एकजुट हुआ और न्याय को निर्धारित किया गया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आप गुनगुने कलीसिया से बोल रहा हूँ। 10 कुवारियाँ प्रभु से मिलने के लिए निकली, उनमें से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, जैसा कि हमने आज सुबह इस बात को लिया, वो कलम किया हुआ पेड़। अब याद रखें, जब वे परमेश्वर से मिलने के लिए गई, अब देखें, बाइबल ने कहा किताबें खोली गई थी, दानियल 7:9 किताबों को खोला गया था, यही पापी की किताब है। और एक और किताब खोली गई थी, उसके साथ कौन आया था? रैप्चर से वो कलीसिया, ओह 10,000 गुना हजारों गुना हजारों के हजार उसके साथ आए और उसकी सेवा की, उसकी पत्नी दुल्हन, ओह महिमा, उसकी पत्नी उसके साथ आई। कलीसिया, न्याय निर्धारित किया गया था और किताबें खोली गई थी और एक और किताब खोली गई जो सोई हुई कुवारी है और हर एक मनुष्य का इस तरह किताब से न्याय हुआ था। आपको एक कारण देने के लिए पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया और तब क्या होगा। आप अब अच्छी तरह से जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप इससे पहले इसे शायद नहीं जानते होंगे लेकिन अब आप जानते हैं, समझे। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। वो एक जो अस्वीकार करता है वो अच्छी तरह से जानता है और उसके बाद वो इसे अस्वीकार करता है, उनका क्या ठिकाना। उसके पैर पीतल के जैसे हैं, दैविक न्याय। अब देखते हैं, हम जल्दी से अब पन्ने के अंत तक आगे जाएंगे। बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से और उसकी आँखें आग की लपटे थी और उसके पाँव पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। बहुत से जल की आवाज, जल क्या दर्शाता है? यदि आप इसे चिन्हित करना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 17:15 की ओर जाएं और आप पाएंगे कि बाइबल ने कहा जो पानी तूने देखे वह मोटाई है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। तो ठीक है, आवाज जीवन के समुद्र में बहते प्राण के लिए क्या ही भयानक बात है। कोई भी नेतृत्व करके चलाने वाला नहीं है, ढीला ढाला लहर के साथ बहता हुआ बड़े जल की धाराओं के गिरने की गर्जन को सुनना एक बहते हुए प्राण के लिए कितनी भयानक बात होगी। बहुत से जल की आवाज, उसकी आवाज क्या है? यह न्याय है। पवित्र आत्मा के जरिए से सेवकों की आवाज जो हर युग के लोगों के लिए पुकार उठती है वहाँ खड़ी हुई है। बहुत से जल की आवाज पुकार उठती है, लोग और भीड़ उसके हाथ में उन सात तारों की आवाज जो हर कलीसिया के युग के लिए पुकार उठती है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए यीशु के नाम का बपतिस्मा, अन्य जुबान में बोलना, परमेश्वर की सामर्थ, मसीह का पुनरुत्थान, दूसरा आगमन, दैविक न्याय, इस एक में से बहुत से जल की आवाज निकलती है जो मनुष्य के पुत्र के जैसे दिखता है। बहुत से जल यह जानने के लिए क्या होगा कि आप सभाओं में बैठे हुए हैं और सुना कि आपको परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए और पवित्र आत्मा को पाना है और एक बहता हुआ प्राण उस आवाज को सुनने के लिए जो उस सभा में बोलती है जिसे आपने बैठकर और सुना परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया गया और इसे इनकार कर दिया। वो बड़ी गिरावट आपके ठीक नीचे है, वे बड़े जल का बहाव जो आपको आपके अनंतता के विनाश तक ले जाएगा। बहुत से जल की आवाज उसका चौथा व्यक्तित्व, बहुत से जल की आवाज जब इसे महिमा में रिकॉर्ड या दर्ज किया गया है, आप इसे कैसे करेंगे? जब आवाज आज रात को रिकॉर्ड की गई है, आपकी आवाज रिकॉर्ड की गई है, आपके विचार रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसे ही वो है। ध्यान दें, आपकी आवाज स्वर्ग में तेज है आपकी तुलना में, मेरा मतलब है आपके विचार स्वर्ग में अधिक तेज है उसकी तुलना में जो आपकी आवाज धरती पर है। निश्चय ही ऐसा है, परमेश्वर आपके विचारों और हृदय के इरादों को जानता है, वह इसके बारे में सब जानता है। उसने फरीसी से कहा, तुम ढोंगी, तुम अच्छी बातों को कैसे बोल सकते हो जबकि मन के भले भंडार से भली भांति निकलती है। मुझे अच्छे गुरु कहकर बुलाते हो और मैं जानता हूँ, मैं सीधे तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि तुम ढोंगी हो। तुम्हारा इसका मतलब ऐसा नहीं है। ओह, उस दिन पर क्या होगा जब वो गर्जनाओं की आवाज बहुत से जल से बाहर आने लगती है। बहुत से कलीसिया युग संगठित हो चुके हैं। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जो बचाए गए हैं। मुझे आपसे यह कहने दो, अब आप जो बहते हुए प्राण हैं, आप जो अभागे बहते जा रहे हैं, जो उस बड़ी उठती हुई जल धाराओं पर बह रहे हैं, सावधान रहें। यह एक भयानक बात होगी जब आप जान जाते हैं कि यह उस वक्त आपके पास कोई बचाव नहीं होगा, आप तब बच नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका नाश ठीक आपके सामने है। आप कुछ ही मिनटों के भीतर जब आप उस आवाज को बोलते हुए सुनेंगे, मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के काम करने वालों, उस सनातन की आग के अंदर चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आप जान जाएंगे कि जब आपने उस जलधाराओं की आवाज की गर्जनाओं को सुना था जो उन सभाओं में हुआ करती थी जिस समय आप इस आवाज को छोड़कर निकल जाते थे। ओह, क्या ही भयानक बात है, क्या ही बुरा सपना। आपके साथ ऐसा न होने देना। लोगों, पश्चाताप करें, अभी परमेश्वर के साथ ठीक कर ले जब आप ठीक कर सकते हो। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, एक मनुष्य के लिए इससे और क्या मीठा होगा जिसका लंगर डाला हुआ है, वह सदाबहार पेड़ के नीचे लेटा हुआ है जो जल के कल कल की आवाज को सुन रहा होता है। ओह, यही वो कलीसिया है जो स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई है, परमेश्वर की उस आवाज के साथ जो मधुरता से कल कल करती हुई और तब उनसे बात करती है। देखो ये क्या है, यह पापी के लिए दोषी ठहराना है और बचाए हुए के लिए आशीष है। एक मनुष्य जिसने उस चट्टान यीशु मसीह पर अपनी नाव को सुरक्षित रूप से लंगर डाला हुआ है और बस पड़ा रहता है और सुनता रहता है कि वह कैसे विश्राम कर सकता है, उस विश्राम में प्रवेश करो। मैं किस तरह से वहाँ जाना पसंद करूँगा जहाँ जल बह रहा हो। यदि हम कभी मछली पकड़ने या कुछ भी करने जाते हैं तो मैं ज्यादातर ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पानी कल कल बह रहा हो, क्योंकि ये बस आपको विश्राम देता है। आप इसे सारी रात बस बातें करते हुए सुनते हैं। ओह प्रभु, क्या ये सुंदर नहीं है जब आप वास्तव में अपने प्राण को मसीह में लंगर कर सकते हैं, ऐसे एक स्थान में इतना तक कि आप उसके सामने शांत हो सकते हैं और उसकी आवाज को आपसे बात करते हुए सुन सकते हैं। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें अनंत जीवन देता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की नींव डालने से पहले जानता था, मैंने तेरा नाम किताब पर डाला, तू मेरा ही है, मत डर, यह मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैं गाता हूँ, मैंने अपने प्राण को विश्राम के एक बंदरगाह में लंगर किया है, मैं प्रचंड समुद्र पर अब और समुद्री यात्रा नहीं करूँगा, वो आंधी शायद तेजी से प्रचंड हो, तेज तूफान, लेकिन यीशु में मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ। याद रखें, वही आवाज जो आपसे मधुरता से बात करती है वो पापी को दोषी ठहराएगी। वही बाढ़ जिसने नूह को बचाया उसने पापी को नष्ट कर दिया। देखो मेरा क्या मतलब है। बहुत से जल की आवाज, देखो अब बाल ऊन की नाई और आंखें आग की ज्वाला की नाई, पैर पीतल की नाई और बहुत से जल की आवाज। और उसके अपने दाहिने हाथ में सात तारे थे, सात तारे। अब यहाँ बीसवा पद लेते हैं, अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है और उन सात सोने के दीवटों का भेद, वे सात तारे या सात संदेशवाहक, सात सेवक, सातों कलीसियाओं के वे सात दीवट, सात कलीसियाएं हैं। वह अपने लिए इसका अनुवाद करता है ताकि निश्चय ही कोई गलती न हो। हर एक कलीसिया युग के लिए एक दूत, ओ ये सुंदर होगा इस सप्ताह जब हम इतिहास में पीछे जाकर उन दूतों को उठाते हैं और देखते हैं कि वही सेवकाई उनके पास थी, उनके पास वही सेवकाई थी, बिल्कुल उसी तरह से उस छोटी कलीसिया में वहाँ उन सारे युगों में से होते हुए। कुछ समय पहले किसी ने कहा, आप जानते हैं कैथोलिक कलीसिया एक अच्छी कहावत है कि यह एक वास्तविक कलीसिया है क्योंकि ये वहाँ सारे युगों में से होती हुई खड़ी थी। मैंने कहा इसमें कोई रहस्य नहीं है, जबकि उसके पास सारा शासन खड़ा था और उसके पीछे बाकी की सारी चीजें थी और किस तरह इसने खड़े होकर और तूफानों को रोका। लेकिन मेरे लिए रहस्य तो ये है कि किस तरह से वो छोटा सा कम संख्या के लोगों का झुंड हमेशा ही तूफान को रोक सका, जिस झुंड को आड़ी से काटा गया था और शेरों के बीच में फेंक दिया गया और चौखटों पर डाला गया और खिलाया गया और जला दिया गया और शेर के द्वारा और मार डाला और हर एक चीज को किया, और वे इससे कैसे बच निकले। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का हाथ उनके साथ था, ऐसा ही है और आज भी उसका उजियाला अब भी जल रहा है। आमीन। जी हाँ श्रीमान। अब सात तारे जो मेरे दाहिने हाथ में थे, उसके पास उसके दाहिने हाथ में सात तारे थे, जिसका मतलब है सात युगों के वे सात सेवक। ओह यह सुंदर बात है। हम किस तरह से पीछे जाकर उस सेवक को लें जिसने संदेश को एफिसियों की कलीसिया से लेकर आया, और जिस सेवक ने संदेश को लाया और मृत्यु तक उसके साथ बना रहा, वहाँ से ठीक इस मुरना की कलीसिया तक और पेरगमुन कलीसिया, थुआतीरा और आगे के युग में से होते हुए यहाँ तक कि अब इस युग में भी, वे सेवक जिन्होंने उजियाले को बनाए रखा और लेकर आया और इसे आरंभ के मूल की तरह थामे रखा और उसके जरिए से उजियाले को लाया, उसने उन्हें अपने दाहिने हाथ में थामे रखा। सोचें, दाहिने हाथ का मतलब बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मसीह बैठा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास दाहिना हाथ है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन मसीह सामर्थ का दाहिना हाथ है। आपके दाहिने हाथ का मनुष्य वो व्यक्ति जो आपके पास खड़ा रहता है, आपके सबसे नजदीक होता है। और याद रखें, वे सात तारे उसके दाहिने हाथ में थे। जरा सोचे, वे अपनी ऊर्जा को खींच रहे थे, उससे अपने उजियाले को खींच रहे थे, वे पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे, उसके दाहिने हाथ में। ओह परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक उसी तरह होता है। थामे हुए कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जैसा दूतों में से एक ने आरंभ में वहां पुकार उठा था, याद रखें, एक दूत का मतलब संदेशवाहक होता है। हम बाद में सप्ताह में उन गहरी बातों के अंदर जाएंगे। एक दूत का मतलब संदेशवाहक होता है। और उसने कहा, कौन हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है जो मसीह में है? क्या बीमारी कर सकती है, जोखिम कर सकता है, नग्नता कर सकती है, तलवार कर सकती है, क्या मृत्यु कर सकती है? मैं मान लेता हूँ। और उसने कहा कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है जो मसीह में है, क्योंकि हम उसके दाहिने हाथ के लिए पूरी तरह से समर्पण हुए हैं। कोई कहता है, पवित्र शोर मचाने वाले, पवित्र शोर मचाने वाले, वे इससे थोड़ा भी परेशान नहीं होते हैं। तुम एक धार्मिक पंथी हो, वे इसे भी नहीं सुनते हैं, वे तो पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उस जीवन को सामर्थ्य के दाहिने हाथ से खींच रहे हैं। नम्रता और दयालुता और सज्जनता और धैर्य में उसके प्रकाश को प्रतिबिंब करते हुए चिन्ह और अद्भुत कार्य और चमत्कार करते हुए। संसार इसे जादू टोना बोलने दो, जो कुछ भी वे चाहे बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम समर्पित हैं और उसके दाहिने हाथ में हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है प्रभु? अब आइए जल्दी करें, क्योंकि हम आपको थकाना नहीं चाहते हैं। उसके दाहिने हाथ में सात तारे हैं। अब उसके व्यक्ति का सातवां और अंतिम प्रतिनिधित्व, और उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकलती है। मेरा मतलब है वो छठा है। उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकलती है और बहुत से जल की आवाज, और उसके मुंह से उसके दाहिने हाथ में तारे थे, और उसके मुंह से एक तेज वो दोधारी तलवार निकलती है। अब क्या आप जानते हैं कि बाइबल में दोधारी तलवार क्या है? अब बस इस बात को पकड़ेंगे जिससे आप जान जाएंगे। इब्रानियों 4:2 को लेंगे ठीक एक या दो पन्ना पीछे और आप इसे समझ जाएंगे। देखो, इब्रानियों ठीक यहाँ प्रकाशित वाक्य के पीछे है, यहूदा और फिर इब्रानियों। अब इसे नजदीक से देखें, या इब्रानियों के 4th अध्याय पर यहाँ हम हैं। तो ठीक है, इब्रानियों का 4th अध्याय और 12th पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और जीव और आत्मा को और गाँठ गाँठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और फिर वे आपको मनों को पढ़ने वाला कहते हैं। यह परमेश्वर का वचन है जो उसके कलीसिया में प्रकट करता है, किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज। जैसे कि मैंने अभी सोचता हूँ, वहाँ कुछ तो एक और भी वचन है। मैं नहीं जानता कि क्या मैंने एक वचन लिख कर रखा है कि नहीं। प्रकाशित वाक्य 19, बस एक मिनट, आइए इसे फिर से लेंगे। मैं सोचता हूँ यह सही है। मैं शायद प्रकाशित वाक्य 19 लगभग 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। यहाँ फिर से सफेद आता है, न्याय, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। आप जानते हैं कि यह कौन है? क्या आप नहीं जानते? तो ठीक है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। वो कौन था? वो उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। ओह, वह अब राज्य में आ गया है, और उसका और एक नाम लिखा है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके मुंह से क्या निकलता है? क्या निकला उस सफेद घुड़सवार के? और प्रकाशित वाक्य 7 में भी, जब मैं सोचता हूँ कि 8, जब सफेद घोड़ा, नहीं ये 6 है, जब सफेद घुड़सवार आगे जाता है तो उसे एक धनुष दिया गया था जय पाने के लिए और जीतने के लिए, और उसके मुंह से एक तलवार निकली। वो कौन था? प्रकाशित वाक्य का सफेद घुड़सवार। तलवार पर ध्यान दें, उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकलती है, वो वचन, और अंत में उसके वचन के द्वारा जब यह परमेश्वर के सारे पुत्रों के लिए प्रकट होता है, तो वह अपने इस वचन के साथ, उसके तेज तलवार के साथ हर एक राष्ट्र को रौंद देगा। यहाँ देखें कि क्या होता है, जैसा कि हम इसमें जाते हैं। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख से दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। एक तेज दोधारी तलवार, इस व्यक्ति के मुंह से क्या निकल रहा था? परमेश्वर का वचन। ये एक तेज दोधारी तलवार है, यह क्या कर रही थी? हृदय के विचारों को, इरादों को जांचती है, यहाँ तक गूदे से भी अंदर, मांस लहू की कोशिकाओं, हड्डी के अंदर, हड्डी के तत्व से भी आगे, इससे भी आगे गहराई में जाकर, यहाँ तक कि विचारों को जांचते हुए और हृदय के इरादों को, यही परमेश्वर का वचन करता है। और ये वचन देहधारी हुआ था और हमारे बीच डेरा किया था, और अब उसकी कलीसिया में वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा करता है। उसके दूत उसके हाथ में है, सेवकाई करते हुए परमेश्वर उसके कलीसिया पर निर्भर कर रहा है। परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है कि इस युग में हम इस सुसमाचार के उजाले को, इस एक मरते हुए मूर्ति पूजा को मानने वाले रीति रिवाज के संसार में लेकर आए। परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर बोझ को डाला है, हाय हम पर, यदि वह मूर्ति पूजक संसार बिना जाने मर जाता है। ओह, वे पढ़ते हैं, लिखते हैं, अंक गणित के काम को करते जाते हैं, और कुछ धार्मिक पर्चों को छपवाते हैं, और उन्होंने धर्मांतरण के एक समूह से अधिक और कुछ नहीं बनाया है। मेरा मतलब है सुसमाचार। सुसमाचार केवल वचन ही नहीं है, पौलुस ने ऐसा कहा। पौलुस ने कहा, सुसमाचार केवल वचन के जरिए से ही हमारे पास नहीं आया, लेकिन उस वचन के प्रकटीकरण से। जब वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन को हृदय में बोया जाता है, जिसने पवित्र आत्मा को पाया है और उसे उत्पन्न करता है, जो वचन कहता है उसे करेगा, और वो वचन हृदय के विचारों को जांच सकता है। महिमा, ओह प्रभु, ओह विचारों को जांचने वाला और हृदय के इरादों को वो वचन करता है। उसके मुख से निकलता है एक तेज दोधारी तलवार मूर्ति पूजकों को जगाती है। इन दिनों में से किसी एक दिन कुछ तो होने जा रहा है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन प्रकट बना। देखो, यीशु ने कहा सारे संसार में जाओ। मरकुस 16 कलीसिया के लिए अपनी अंतिम सलामी दी। इससे पहले वह कलीसिया युग में खुद को प्रकट करने के लिए वापस लौटे। उसने कलीसिया को आज्ञा दी, सारे संसार में जाकर और हर एक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। क्या? सुसमाचार को प्रचार करो। मरकुस 16, हर एक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। यह क्या है? दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रदर्शित करो, जो करना था। अब देखो, हर एक के लिए न ही केवल वचन को सिखाना, उसने ऐसा कभी नहीं कहा जाकर वचन को सिखाओ। उसने कहा जाकर सुसमाचार प्रचार करो। वचन को नहीं सिखाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। और ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो इस सुसमाचार का विश्वास करते हैं। मेरे नाम में वे शैतानों को निकालेंगे, वे नई नई भाषा में बोलेंगे। यदि वे एक सांप को भी उठा लेंगे या कुछ घातक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। और वे आगे बढ़े। वचन ने कहा हर कहीं प्रचार करते हुए प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। वे चिन्ह पीछा करते हुए वचनों को प्रमाणित कर रहे थे। यही सुसमाचार है। वो सुसमाचार प्रदर्शन पर है। ये चिन्ह कितनों का पीछा करेंगे? संसार के अंत तक हर युग के लिए। वहाँ वह छोटा सा कुछ ही संख्या का झुंड वहाँ से होते हुए नीचे की ओर आ रहा है, उस उजाले को पकड़े हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा डर मत छोटे झुंड, ये तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य को दे दे। छोटा सा झुंड हमेशा ही कुछ ही संख्या में रहा है, न ही बहुत अधिक संख्या में। तो ठीक है, अब एक और हवाला दूंगा। और हमने 20वां पद दिया, तो अब यहाँ इस पद को यहाँ पर देखते हैं। अब 16वां पद, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। अब लेते हैं और उसका मुख और उसके मुख से चौकी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यदि आप आइए देखें मत्ती 17, आइए अब इसे लेंगे जबकि हम इस पर हैं। सो हम अभी इसमें से होकर जा रहे हैं, और उन लोगों में से कई जो इसे ले रहे हैं, आइए या इसे लिख रहे हैं, हम बस उन्हें पढ़ेंगे ताकि हम जान सके। मत्ती 17 तो ठीक है। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। उसका रूपांतर हुआ। उसने क्या किया? अपने आप को रूपांतर में लाया सीधे उसके आगमन के दिन में। अब देखिए, उसके कुछ ही घंटे पहले ही यीशु ने अगले अध्याय में यहाँ इस हवाले को दिया था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई यहाँ खड़े हैं, कितने लोग जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे? क्या यह सही है? और उसने तीनों गवाहों को लिया, पतरस और याकूब और यूहन्ना, क्योंकि पुराने नियम में हर एक चीज, हर एक छोटा सा वचन तीन गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया गया था, और उन्हें पहाड़ पर लेकर गया। ध्यान देना पहले क्या आता है। ओह, मैं अब यहीं पर नहीं रुक सकता, मुझे अब इसे लेना होगा। देखो, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या देखी, वे यीशु को पहाड़ पर ले गए, मतलब वो उन्हें ऊपर पहाड़ पर ले गया, और वह उनके सामने परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ। उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे, और वहाँ पर उसे मूसा और एलिया दिखाई दिए। मनुष्य का पुत्र अब किस रूप में आ रहा है? और पहले उपस्थित होंगे जो मूसा और एलिया होंगे। अब ध्यान दे, इससे पहले यीशु धरती पर लौटे, अब यह समय से थोड़ा आगे है, लेकिन एलिया की आत्मा धरती पर वापस आएगी और बच्चों के हृदय को वापस पिता की ओर फेरेगा। बाइबल ऐसा कहती है। यीशु ने उसे यहाँ पर देखा, प्रेरितों ने उसे यहाँ पर देखा, महिमा पाए हुए मनुष्य के पुत्र के आगमन के क्रम में उसे महिमावंत होना है और वापस आना है। पहली चीज इससे पहले कि वे उसे देखते, वो क्या थी? एलिया। उसके बाद क्या? मूसा। इज़राइल वापस लौट रहा है, नियम को मानने वाले, और उसके बाद महिमा पाए हुए मनुष्य के पुत्र को। हालेलुया! क्या आप उसके आगमन के क्रम को देख रहे हैं? एलिया की आत्मा या अंतिम कलीसिया का युग का गवाह, देखो, सामर्थ में आ रहा है ताकि उसे प्रकट करे। फिर 144,000 यहूदी सीने पर्वत पर इकट्ठा होते हैं, जहां इज़राइल अपने आप में एक राष्ट्र बन जाता है, संसार का सबसे पुराना राष्ट्र, संसार का सबसे पुराना झंडा उनका अपना राष्ट्र है, उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी सेना है, उनका अपना पैसा है और बाकी हर एक चीज वे राष्ट्रों के संघ के सदस्यों में से एक हैं, क्योंकि वे एक राष्ट्र हैं। यीशु ने कहा कि उन्हें तब तक कभी निकाला नहीं जाएगा जब तक कि सारी बातें पूरी न हो जाएं। यह रहस्य की बात है कि यहूदियों का वह झुंड हर स्थान पर सताया गया और अस्वीकृत हुआ और निकाला गया और बाहर फेंका गया, जैसे कलीसिया इन अस्वीकृति के युगों में से होते हुए आई है। और फिर भी यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ की कलियां खिलते हुए देखते हो, वो राष्ट्र फिर से एक राष्ट्र बनने के लिए वापस आ रहा है। समय निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी न हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। यह तनाव, यह लोग जाते न रहेंगे। हिटलर ने उन्हें मारने की कोशिश की, मुसोलिनी ने उन्हें मारने की कोशिश की, स्टालिन ने उन्हें मारने की कोशिश की, हर किसी ने, लेकिन वे कभी भी कलंकित नहीं होंगे या धरती पर से लुप्त नहीं होंगे। वे एक ऐसे लोग होंगे और वहाँ पर एक राष्ट्र खड़ा होगा। आमीन। वहाँ मूसा और एलिया आएंगे। ओह, आशा करता हूँ कि आप इसे समझ जाएंगे। तो ठीक है, सूर्य अपनी शक्ति में चमक रहा है, उसका मुख रूपांतरित परिवर्तित हुआ। अब एक और चीज, प्रकाशित वाक्य 21:23 में है, यदि आप इसे लिख कर रखना चाहते हैं, नए यरूशलम 21:23 में, वह मेमना है जो उस नगर में है जो इसका उजाला है, चमक रहा है। इसलिए उन्हें नगर में उजाले की आवश्यकता नहीं है, सूर्य इसमें उदय नहीं होगा, क्योंकि शहर के मध्य में जो मेमना है वही उजाला होगा, और जो राष्ट्र बचाए गए हैं वे उस मेमने के उजाले में चलेंगे। आमीन। वह मेमने का उजाला है। ओह, क्या आप इसके बारे में आनंदित नहीं है? केवल इतना ही नहीं, लेकिन वह आने पर भी है। यूहन्ना ने उसे प्रभु के दिन पर देखा, धार्मिकता का सूर्य। आइए मलाकी 4 में जाएंगे। मलाकी जो पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता है, मलाकी का 4 अध्याय। मेरे पास मेरी बहुमूल्य पत्नी के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी कहानी है। मैंने उसे हमारे विवाह से पहले एक कठिन समय दिया। मैंने हमारे विवाह के बाद इसे पूरा करने की कोशिश की और मैं नहीं जानता था कि मैं फिर से विवाह करना चाहता हूँ या नहीं, और इसलिए वो पूरी तरह से टूट गई थी। और मैंने सोचा कि वो बहुत ही एक अच्छी लड़की थी, बस उसे छोड़ दूं ताकि कोई अच्छा पुरुष उससे विवाह करे जो उसका ख्याल रख सके। और मैंने यह भी सोचा कि मैं इसके योग्य नहीं हूं और मैं उसकी किसी भी तरह दया के योग्य नहीं हूं। इसलिए वह पूरी तरह टूट गई थी और नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है। यह बात कोई 20 वर्ष पहले की है। वह बहुत टूट सी गई थी। वह दिन और रात रोने लगी और मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। इसलिए नहीं, मैं उससे प्रेम नहीं करता था, क्योंकि मैं उसका समय नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो कोई तो ढूंढ ले, कोई तो भला व्यक्ति, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है, बस वो इसी तरह से करे और मुझे बस उसके साथ और इस तरह की चीजों के साथ जाना। और मैंने सोचा कि वह मुझसे प्रेम करती है और मुझे पता है कि मैं उससे प्रेम करता था, तो मैंने सोचा तो ठीक है, मैं बस कोशिश करूंगा, मैं किसी और लड़की के साथ घूमूंगा और यहाँ वहाँ जाऊंगा और उसे मेरे प्रति बुरा महसूस करवाऊंगा। मैंने उसे मार डालना चाहा। मुझे इसके बाद बहुत बुरा लगा था। वह पूरी तरह से टूट गई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं इस तरह से तुम्हारा समय नहीं लेना चाहता। और उसने कहा, लेकिन मैं केवल तुमसे प्रेम करती हूँ बिल, और तुम केवल एक ही हो जिससे मैं प्रेम कर सकती हूँ। कहा, मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम किया है। मैंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैंने कहा, तुम जानती हो, मैंने कहा, मैं एकांत में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा, मैं बस एक एकांत में रहने वाले की तरह जीने जा रहा हूँ। देखो, मैं बिल्कुल ही विवाह नहीं करने वाला। और वह बिल्कुल उस पर बनी हुई थी, आप जानते हैं, बेचारी छोटी लड़की। और वह बाहर झोपड़े में चली गई और वो वहाँ पर चली गई और वह अपने घुटनों पर आई और उसने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानती कि क्या करना है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती, और अब भी मैं बिल से प्रेम करती हूँ और मैं नहीं जानती कि क्या करना है। परमेश्वर, क्या आप मुझे थोड़ा सा आश्वासन देंगे? क्या आप बस मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी आपसे ये नहीं मांगा था, परमेश्वर, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मांगूंगी। उसने कहा, लेकिन यदि आप केवल मेरी सहायता करें और मैं इस बाइबल को खोलूंगी और आप मुझे एक वचन को दीजिए। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि आपने ऐसा किया है। और जब उसने इसे खोला तो यह मलाकी 4 था। देखो, मैं यहोवा के दिन, उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को दूंगा या भेजूंगा। उसने कहा, मैं वहाँ से उठी बस पूरी तरह से संतुष्ट होकर कि जैसे कुछ भी हो हम विवाह करने जा रहे थे, समझे?
क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सदन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य SUN सूर्य उदय होगा और धर्मी जन उठ खड़े होंगे, चंगाई उनके पंखों में साथ है। सूरज अपनी शक्ति में चमक रहा है, ओह हमारे बीच में आज रात परमेश्वर के पुत्र की शक्ति चमक रही है, सात सुनहरे धूपदान के साथ हमारे बीच में खड़ा हुआ उसके सात प्रकार के व्यक्तित्व में एक न्यायी के रूप में उस एक के नाई जिसने हमारे लिए सहन किया और मर गया और खुद पर दैविक न्याय को लिया और दाग को रौंदता है जो परमेश्वर की जल जलाहट है। पापी के लिए वो एक भयानक जल प्रभात है, आपके लिए जीवन के समुद्र पर प्राण को छोड़ देना है और कलीसिया के लिए एक मधुर उद्धार विश्राम में लंगर डाले हुए और बुलबुलाते हुए कल कल की आवाज को सुनना जैसे आप वहाँ पड़े हुए और विश्राम कर रहे हैं, पूरी तरह से मसीह में संतुष्ट है। क्या ही समय है, अपनी गर्म किरणों के साथ हम पर चमकता है। मत डर, मैं वो हूँ जो था जो है और आने वाला है, मैं स्वर शक्तिमान हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं अल्फा और ओमेगा दोनों हूँ और मैं उसे मुफ्त में दे दूंगा जो उस जीवन के जल के झरने के लिए प्यासा है। ओह क्या ही प्रतिज्ञा है और क्या ही यह प्रेम संबंध है और मेमना नगर के बीच में है जहाँ उजाले की कोई आवश्यकता नहीं है और वह उसके पंखों में चंगाई के साथ धार्मिकता का सूर्य है। वह घाटी के सोसन का फूल है और चमकता भोर का तारा, वह मेरे प्राण के लिए 10,000 के अनुकूल है, मेरे दुख में वह मेरा विश्राम है, मुसीबत में वह मेरा निवास है, वह मुझे हर एक चिंता को उस पर डालने के लिए कहता है। हालेलुया, वह घाटी के सोसन का फूल है और चमकता भोर का तारा, वह मेरे प्राण के लिए 10,000 के अनुकूल है। जी हाँ श्रीमान, ओह वह महान भोर का तारा जैसा कि वह चमकने के लिए निकलता है आने वाले दिन को अभिवादन करते हुए, इसे अभिवादन करते हुए कहते हुए वो दिन निकलने के लिए तैयार हो रहा है, पुत्र नजदीक आ रहा है और वह अपने आप को अन्य सभी तारों के पीछे से ऊपर लाता है, ओह प्रभु अपने पंखों में चंगाई के साथ। अब वापस हमारे संदेश पर जाते हुए, और हम अब बंद कर रहे हैं कल रात के लिए तैयार होने के लिए क्योंकि समय 8:45 तक का है, हम किसी को बहुत समय तक रोके नहीं रखना चाहते, तब सो हम यहाँ हो सकते हैं। तो ठीक है, धार्मिकता का सूर्य उसके पंखों में चंगाई के साथ है, अब उसका मुख, वह एक न्यायी था या दूसरी चीज यह दिखाने के लिए कि वह प्रभु के दिन पर था, क्या आप यह विश्वास करते हो? वह प्रभु के दिन में चला गया और प्रभु को एक न्यायी के रूप में देखा, न ही याजक के रूप में, न ही राजा के रूप में, लेकिन एक न्यायी के रूप में, वह एक न्यायी है, क्या आप ये विश्वास नहीं करते? बाइबल कहता है कि वह एक न्यायी है और यहाँ वह पूरी तरह से न्यायी के रूप में तैयार था यह दिखाते हुए कि उसने क्या किया था, वह क्या था, वह पापी के लिए क्या था, वह मसीही के लिए क्या था, और अब यहाँ पर बहुत से जल की आवाज के साथ खड़ा है और उसका मुख सूर्य की नाई चमक रहा था। अब परिणाम 16वां पद, और नहीं मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह 17वां पद है, और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके कदमों पर मुर्दों सा गिर पड़ा, प्रभु वो भविष्यता और अधिक नहीं खड़ा हो सका। देखा क्या ही दर्शन है, उसने बस अपनी शक्ति को खो दिया और वह उसके पैरों पर सीधा मुर्दों सा गिर पड़ा। अब देखें, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और मुझसे कहा, डर मत, मैं पहला और अंतिम हूँ। ओह प्रभु, ना ही एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं प्रकाशन का पहला, प्रकाशन का अंतिम हूँ, मैं वो हूँ जो था, मैं वो हूँ जो है, मैं वो हूँ जो आने वाला है। आइए देखते हैं, मैं हूँ मैं, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और मुझसे कहा, मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, ठीक अभी, और फिर वह चिल्ला उठा, आमीन, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब डरो मत, हम क्यों डरे कलीसिया, क्यों उसके वचन रखने के लिए, उसके वचन के बारे में
सोचने से विफल रही है। आइए यहाँ बस एक मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं। यह कलीसिया हमेशा ही क्यों डरती है? जो भी उसने प्रतिज्ञा की है तो क्या उसने हमारे सामने प्रकट नहीं की है? आपको एक सजा का डर क्यों लगता है या उसके बाद का? डर मत, मैं वो हूँ जो था, वह जो है और जो आने वाला है। मैं पहला और अंतिम हूँ। मेरे पास ठीक यहाँ अधोलोक और मृत्यु की कुंजी है। क्यों? मैंने जय पाई है और अधोलोक और मृत्यु दोनों पर जय को पाया है, जो कि कब्र और अधोलोक दोनों ही है। स्वयं मृत्यु स्वयं अधोलोक पर तुम्हारे लिए जय को पाया है। मैंने इस सब पर जय को पा लिया है। मैंने नरक मृत्यु कब्र पर जय पा लिया है। जब वो धरती पर था तो वो ही केवल था। बहुत से पुरुषों ने जीतने के लिए ठान लिया था। क्या आपको यह पता था? नेपोलियन ने संसार को जीतने के लिए ठान लिया और उसने 33 साल की उम्र में इसे कर दिया। 17 से 25 वर्ष की आयु में नेपोलियन मद निषेधवादी था। वह शराब पीने या कुछ भी करने में विश्वास नहीं करता था। वह फ्रांस गया। वह एक फ्रांसीसी नहीं था, वह एक द्वीप से आया था। वो वहाँ पर चला गया, यहाँ तक वह फ्रांस को भी जीतने के लिए, क्योंकि वह इसे पसंद नहीं करता था। वो फ्रांस को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने जय को पाया था और उसने आगे बढ़कर और उसने फ्रांस को जीत लिया और उसने उन फ्रांसीसी लोगों को लिया और संसार को जीत लिया। और 33 वर्ष की उम्र में वह बैठकर और रोने लगा, क्योंकि वहाँ जय पाने के लिए कोई और नहीं था। और एक शराबी बनकर मर गया, पराजित हो गया। वह खुद पर भी जय नहीं पा सका, देखा। और उसके बाद उसे वाटरलू में अपनी पराजय का सामना किया। उसने वाटरलू में उसके अंत का सामना किया। मैं वहाँ पर गया हूँ और पुराने प्राचीन चिन्हों के अवशेषों को और चीजों को देखा है जब हम उस देश में थे। अब हम उस विजेता को लें। उसने एक युवक के रूप में आरंभ किया था और उसने जीत के लिए गलत दिशा को अपनाया और वो मर गया, एक अपमानजनक। लेकिन एक समय में एक और युवा व्यक्ति संसार में आया था। वह 33 वर्ष की उम्र में मर गया और उसने उन सब चीजों पर जय को पाया जिसे वो जय पा सकता था। जब वह धरती पर था, उसने जुनून पर जय प्राप्त की, अभिमान, उसने बीमारी पर जय प्राप्त की, उसने शैतान पर जय प्राप्त की। जब वो मरा तो उसने मृत्यु पर जय पाई। जब वह जी उठा तो उसने अधोलोक पर जय को पा लिया। वह ऊपर गया और वो सब कुछ जीत लिया जो मनुष्य जाति के विरोध में है, और उड़ाना परमेश्वर के दाग के कुंड में और इसे कुचल दिया, और मृत्यु नरक कब्र बीमारी औपचारिकता बाकी हर एक चीज को और इस सब को जीत लिया, और तीसरे दिन जी उठा और ऊपर के सारे वातावरण पर जय प्राप्त की और परमेश्वर और मनुष्य के बीच के उस कोहरे को हटा दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ जोड़ दिया। महिमा ओ प्रभु। वहाँ पर वो सामर्थ्य विजेता खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने पर्दे को दो भाग किया था। वहाँ है वो, उसके पास मृत्यु और अधोलोक दोनों की कुंजी है जो मेरी तरफ लटक रही है। डर मत, उसके दाहिने हाथ की उसकी सामर्थ उस पर रखा और उसके दाहिने हाथ की सामर्थ से उसे ऊपर उठाया, कहा डरो मत, मैं वो हूँ जो था और वो जो है और जो आने वाला है। मैं पहला और अंतिम हूँ। मैं वो हूँ जो जीवित था और मरा और फिर से हमेशा के लिए जीवित हूँ। आमीन। ओह देखो उस सामर्थी विजेता को, देखो देखो स्पष्ट दृश्य में उसे देखो। वहाँ वो खड़ा है, सामर्थ्य विजेता, क्योंकि उसने पर्दे को दो भाग किया है। आमीन। मनुष्य जाति से हर एक बांधा को काट दिया जिससे उन्हें जोड़ा जा सके, जैसे अदन के बगीचे में। अब मनुष्य, मैं इस बात से आपका दम घुटाने जा रहा था, लेकिन मैं इसे कहूँगा, मनुष्य सर्व सामर्थ्य है। आप इसे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो है। एक मनुष्य जो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित होता है, वो सर्व सामर्थी है। क्या उसने नहीं कहा मरकुस 11:22 में, जो कुछ भी चीजों को तुम कहते हो और अपने हृदय में संदेह न करे, यह पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पास ये हो सकता है जो तुमने मांगा है। क्या होता है जब दो सर्व सामर्थी मिलते हैं? जब परमेश्वर और मनुष्य एक साथ आते हैं, दो सर्व सामर्थी, कुछ तो हिलावट होने जा रही है। कुछ जो भी आप परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य की उस सृष्टि करने वाली सामर्थ्य के साथ कहते हो, यह जानते हुए कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है और उसने इसे अपने वचन में कहा है, यह एक ऐसी सामर्थ्य की सृष्टि करता है जो बाहर की ओर जाती है और चीजों को पूरा करती है। वे चीजें जो है ही नहीं इसे बनाती है, वे जैसे कि हालांकि होती है, क्योंकि दो सर्व सामर्थ्य मिले हैं। वहाँ पर वो खड़ा होता है। ओह क्या ये अद्भुत नहीं है? आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ और अच्छी चीजें हैं। 18वां पद, अब 19वां पद, योहन्ना क्या हुआ जब उसने उसका मुख देखा, परिणाम वह उसके कदमों में गिर पड़ा, वह बस और नहीं खड़ा हो सका, उसका मनुष्य जीवन शक्तिहीन हो गया, वह बस इसे नहीं कर सका, वह एक जयवंत था, उसने पहले ही जय को प्राप्त कर लिया था। अब वह एक आदेश को देता है और फिर हम अध्याय को समाप्त करना आरंभ करते हैं। यह 19वां वचन है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। हमने 20वां पद लिया है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ओह, यह असाधारण है मित्रों, उसे वहाँ सर्वोच्च में देखना, उसकी दैविकता की सर्वोच्चता। वह न्यायी है, याजक, राजा, उकाब, मेमना, सिंह, अल्फा, ओमेगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वह जो था, जो है और आने वाला है। परमेश्वर की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौन दिया और हर चीज को प्रसन्न किया। इतना तक परमेश्वर ने क्रूस पर कहा था, जब वह जी उठा उसने कहा यह पूरा हुआ है। परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया, इतना तक कि आत्मा ने जो उसे छोड़ दिया था, ईस्टर की सुबह को वापस आकर और हमारे धर्मीकरण के लिए उसे जिलाया। वहाँ यूहन्ना ने देखा और उसे वह पीतल के पैरों के साथ खड़ा हुआ, आँखें आग की ज्वाला की इधर से उधर सारी धरती भर में घूम रही थी। दानियल ने उसे इससे 700 वर्ष पहले देखा था, उसी स्थिति में उसी प्रकार से वही पुरुष वहाँ खड़ा हुआ था जो प्राचीन काल का था, और वो मनुष्य के पुत्र जैसा था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, और सारे न्याय उसे सौंपे गए थे, सफेद सिंहासन के न्याय में खड़ा हुआ था। इन चीजों को देखते हुए हमें किस तरह के लोग होना चाहिए मित्रों? परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरी प्रार्थना है, समझे, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपने प्राण को उसमें लंगर किया है? आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं, बस शांतिपूर्वक और धीमे से, जैसा कि हम शांतिपूर्वक गाने जा रहे हैं। मैंने अपने प्राण को विश्राम के आश्रय स्थल में लंगर किया है, मैं उन कलकल करते हुए जल धाराओं को कभी भी नहीं सुनूंगा कि मेरे प्राण को दूर भेज दे, लेकिन यह मेरे प्राण के लिए मधुर शांति से बात करेगा। अब शांतिपूर्वक हर एक जन आदर पूर्वक, मैंने अपने प्राण को विश्राम के एक बंदरगाह में लंगर किया है, मैं प्रचंड समुद्र पर और समुद्री यात्रा नहीं करूंगा। वो आंधी शायद तेजी से प्रचंड हो, तेज तूफान, मैं यीशु में हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ। मैंने अपने प्राण को विश्राम के एक बंदरगाह में लंगर किया है, मैं प्रचंड समुद्र पर और समुद्री यात्रा नहीं करूंगा। वो आंधी शायद तेजी से प्रचंड हो, तेज तूफान, मैं यीशु में हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ। मुझ पर चमके महिमा की किरणें प्रभु, प्रभु मुझ पर चमके, उस उजाले घर का उजियाला मुझ पर चमकने दें, ओह मुझ पर चमके प्रभु, मुझ पर चमके। आओ हम उसके लिए अपने हाथ को ऊपर उठाएं, उजाले घर का उजियाला मुझ पर चमकने दे। यीशु के समान बनूं। हाँ प्रभु, यीशु के समान बनूं। धरती पर मेरी लालसा है उसके समान बनने की। सारी धरती की यात्रा के दौरान धरती से महिमा तक मैं केवल उसके समान बनने के लिए मांगता हूं। हे आश्चर्यजनक उद्धारकर्ता, जीवन की यात्रा के दौरान धरती से महिमा तक मैं केवल उसके समान बनने के लिए मांगता हूँ। क्या आप पसंद करेंगे कि उसका जीवन आपके अंदर रहे, उसकी उपस्थिति को प्रतिबिंब करते हुए? यदि आप पसंद करते हैं और आपके पास अभी तक ये नहीं था, तो क्या आप प्रार्थना के लिए खड़े होंगे? वे लोग जिनको प्रार्थना में याद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बैतलियम की चरनी से बस अब खड़े ही रहेंगे। बस साथ ही एक अजनबी आगे आया। आप संसार के लिए एक अजनबी होंगे। धरती पर मेरी लालसा है उसके समान बनने की। सारे जीवन की यात्रा के दौरान धरती से महिमा तक मैं केवल उसके समान बनने के लिए मांगता हूँ। बस यीशु के समान बनूं, समान बनूं, यही मेरी इच्छा है। धरती पर मेरी लालसा है उसके समान बनने की। सारे जीवन की यात्रा के दौरान धरती से महिमा तक मैं केवल उसके समान बनने के लिए मांगता हूँ। दीन, विनर्म और दीन। अब स्वर्गीय पिता, वे अपने पैरों पर खड़े हैं। बहुत से जो आपको ग्रहण करना चाहते हैं, वे यहाँ वहाँ बहते बहते थक गए हैं। वे नहीं जानते वे कहाँ जा रहे हैं। जीवन की उठती लहरों पर, और हो सकता है कि वे जानते हों कि दिन के उजाले से पहले ये हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा। तब उनके आगे विशाल वो जल प्रपात गिरता है, एक बहता हुआ प्राण होगा। वे उनकी तरह ही रहे हैं, वे संसार की तरह रहे हैं, लेकिन वे अब आपके जैसा बनना चाहते हैं। प्रभु, उन्हें अपने राज्य में स्वीकार करें। वे आपके हैं पिता, क्योंकि आप उनके हृदयों और उनके हृदय के इरादों को जानते हैं, और आपने ऐसा लिखा है और इसे अपने होठों से कहा है। वो जो मेरे वचनों को सुनकर और उस पर विश्वास करेगा जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। आपने यह भी कहा प्रभु, धन्य है वह जो पढ़ता है और वह इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है। वे जानते हैं कि समय नजदीक है, वे अब और ज्यादा नहीं बह सकते। प्रभु, जीवन रेखा को उनकी ओर फेंक कर उन्हें अपने आप में खींच लीजिए। प्रभु, होने पाए वे इस रात से आगे बढ़े, यीशु मसीह के उज्याले का प्रतिबिंब करते हुए। मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। होने पाए वे यहाँ कलीसिया पर बपतिस्मा में प्रभु का अनुकरण करें। उनके जीवन में पवित्र आत्मा को डाल दीजिए, ताकि उनके बाकी के दिनों में वे यीशु की तरह बन सके। मैं इसे उसके नाम से मांगता हूँ। बस यीशु के समान बनूं, समान बनूं। आप में से कुछ लोग वे सारे जो पास खड़े हुए हैं या उन लोगों के पास बैठे हुए हैं जो कि मसीही हैं, उनके पास जाकर और उनके हाथ को पकड़ें और उनसे हाथ मिलाएं, उन पर अपना हाथ रखें, कहें आपके प्राण के लिए प्रभु की स्तुति हो, यहाँ हमारी वेदियाँ बच्चों और लोगों से भरी हुई है, हम उन्हें यहाँ नहीं ला सकते हैं।
जीवन की यात्रा के दौरान धरती से महिमा तक मैं केवल उसके समान बनने के लिए मांगता हूँ। मुझ पर चमके प्रभु, मुझ पर चमके। उजाले घर का उजाला मुझ पर चमकने दे। ओह मुझ पर चमके प्रभु, मुझ पर चमके। उजाले घर का उजाला मुझ पर चमकने दे। क्या आप वास्तव में अच्छा महसूस करते हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आप खुश नहीं हैं कि आप मसीह हैं? किसी के हाथ को मिलाएं जो अब आपके पास बैठा हुआ है। जब हम एक स्तुति के गीत को गाने जा रहे हैं, हम उजाले में चलेंगे। ये सुंदर उजाला है, प्रभु यीशु मसीह का उजाला देह में प्रकट हुआ है। हम उजाले में चलेंगे, क्या ही सुंदर उजाला है। आता है जहाँ से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है, हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। यीशु संसार का उजाला है, इसे गाएं हर एक जन। हम उजाले में चलेंगे, ये एक सुंदर उजाला है। आता है जहाँ से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है, हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। यीशु संसार का उजाला है। आओ तुम सारे उजाले के संत घोषणा करो, यीशु संसार का उजाला है। तब स्वर्ग की घंटियां बजेंगी, ओह यीशु संसार का उजाला है। अब अपना हाथ ऊपर उठाएं, हम उजाले में चलेंगे, सुंदर उजाला है। आता है जहां से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है, हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। यीशु संसार का उजाला है। हम उजाले में चलते रहेंगे, ये क्या ही सुंदर उजाला है। आता है जहां से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है, बस हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। यीशु वो संसार का उजाला है। हम उजाले में चलेंगे, सुसमाचार का उजाला सुंदर उजाला है। आता है जहां से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है, हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। यीशु संसार का उजाला है। वापस आरंभ में पेंटिकॉस्ट पर जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, संदेश आगे स्मरणा में आता है, वह आयरिनिस खड़ा था जो परमेश्वर का महान संत था, जो अन्य जबान में बोलता है, परमेश्वर की सामर्थ
मृतकों को जिलाती है, बीमारों को चंगा करती है। वो उजारे में चल रहा था। उसके बाद कोलंबा आता है, महान सामर्थ्य से भरा हुआ। वो परमेश्वर का संत, बहुत से अन्य महान संतों ने संदेश को आ रखा उजाले में चलते हुए, जो सुसमाचार का उजाला है, वही उजाला जो पेंटिकॉस्ट के दिन पर चमका था। मसीह अपने लोगों के बीच में खड़ा है और वे सात सुनहरे धूपदान उसके तेज को प्रतिबिंब करते हुए सूर्य की तरह उसकी गर्मी के बीच में। यहाँ हम 1961 में हैं। हम उजाले में चलेंगे। ये क्या ही सुंदर उजाला है, आता है जहाँ से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है। ओ, हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती है। हे यीशु, संसार का उजाला है। आइए खड़े हो जाएं। हम उजाले में चलते रहेंगे। ये क्या ही सुंदर उजाला है, आता है जहां से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है। हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती हैं। यीशु संसार का उजाला है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि बस इसलिए उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीद लिया। कलवरी के पेड़ पर संसार की चीजों की ओर मैं फिर कभी न मुड़ूंगा। मैं संसार के लिए मर चुका हूं और संसार मेरे लिए मर चुका है। मैं केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह में चलता हूं। मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और मुझ पर उसकी आशीषों को चमकाता है, मुझे उसके राज्य में संगति का दाहिना हाथ देता है। अब हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं और यह अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम आखिर में क्या होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास उसकी अपनी महिमामय देह के जैसे एक देह होगी, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। फिर हम उजाले में चल रहे होंगे, एक सुंदर उजियाला जो आता है जहाँ से दया की कुछ बूंदे उज्जवल है। हमारे चारों ओर दिन और रात चमकती हैं। यीशु संसार का उजियाला है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आप जानते हैं, संदेश काटता और उसके पास सब कुछ करने के बाद मैं लोगों को स्तुति करते सुनना पसंद करता हूँ और आत्मा में आराधना करते और गाते जाना। उन अच्छे पुराने गीतों को गाने से सुंदर और कुछ भी नहीं है। यह सही है, मैं पुराने जमाने के पेंटिकॉस्टल गायन को पसंद करता हूँ, ना ही कुछ ज्यादा ही प्रशिक्षित आवाजें जो सांस को रोके रहते हैं जब तक उनकी आवाज कठोर होकर और उनका चेहरा नीला नहीं पड़ जाता है और नहीं जानते कि वे क्या गा रहे हैं। मैं किसी को तो पसंद करता हूँ जो हो सकता है एक सुर को सही तरह से नहीं रख सकता हो, लेकिन फिर भी उसके पास पेंटिकॉस्टल की आशीषें हों। अब वह इसी तरह के विषय में गा रहा हो। ओह, कितने महिमामय वे मधुर क्रूस के गीत हैं। ओह प्रभु, अब हमारा समाप्ति का गीत, यीशु का नाम अपने साथ लें। दुख और शोक की संतान, ये तुम्हें आनंद और सुकून देगा, इसे हर कहीं तुम जाते हो ले जाओ। कल रात 7 बजे, ठीक 7 बजे सभाएं आरंभ होगी। यीशु के नाम पर झुकते हुए, उसके चरणों में दंडवत करते हुए, स्वर्ग में राजाओं का राजा हम उसे मुकुट पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अब आइए हम सभी गाएं। यीशु का नाम अपने साथ लें, दुख और शोक की संतान, ये तुम्हें आनंद और सुकून देगा, इसे हर कहीं तुम जाते हो ले जाओ। बहुमूल्य नाम, ओह कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। अनमोल नाम, ओ कितना मधुर, कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। अब हमने इसे आज रात समाप्त किया। वो अभी मुझसे पूछा गया, क्या सुबह में सभा होगी? नहीं, कल नहीं होगी। तब आप एक अच्छा विश्राम ले लें। हो सकता है कल रात को मैं उस संदेश को पूरा नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं इसे अगले दिन पर ले लूंगा। हर बार मैं इस पूर्ण संदेश को लेने में विफल रहता हूं, मैं इसे अगले दिन ले लेता हूं। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप पहले से ही कलीसिया युग के लिए तैयार हैं। क्या आप नहीं हैं? तो ठीक है, अब हम धीरे धीरे गाते हुए अपना सिर झुकाएं। यीशु के नाम पर झुकते हुए हर जीभ इसे अंगीकार करेगी, उसके चरणों में दंडवत करते हुए स्वर्ग में राजाओं का राजा हम उसे मुकुट पहनाएंगे। जब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, बहुमूल्य नाम, ओह कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद, बहुमूल्य नाम, ओह कितना मधुर, कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद।